अगर हम देखें तो सूरत नूर बहुत सारी मक्की सूरतों के बाद आने वाली एक मदनी सूरत है। सूरत अल अनफाल से लेकर अब तक हमने जितनी भी सूरतें पढ़ी ये सारी मक्की सूरतें थी, और मक्की सूरतों का मिजाज बिल्कुल तौहीद, रिसालत और ईमान बिल आखिरा की पुख्तगी होता है। मदनी सूरतों में अमूमन अहकाम होते हैं, वैसे तरतीबें तो वो भी इंशाअल्लाह हम बाद में थोड़ी सी उस पर बात कर लेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कुरान की जो इस वक्त की तरतीब है, जिसको इल्हामी तरतीब कहते हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त है। जब हम मक्की सूरतें पढ़ते हैं तो हम अपने ईमान के अंदर इजाफा पाते हैं, एक हिजान की कैफियत, एक जी कैफियत आती है, अल्लाह ताला का बनने को दिल चाहता है, अगर इस तरह की पुख्तगी आने लगती है तो उसकी सूरत आती है कि जिसके अंदर कुछ ऐसे काम भी होते जिसको अमूमन ओवर लुक करते हैं। सूरत सी ही सूरतों में से एक सूरत है। अगर आप देखें तो सूरत नूर का पहले ही वफी बसरी नूरन वफी लिसरन, वो दुआए नूर जिसको अल्लाह के नबी सल्लम फजर मस्जिद जाते हुए रास्ते में अदा करते थे। इंसान की जिंदगी में नूर के बाद वाकई फिर दिल चाहता है इंसान अपने आप को अल्लाह का बना दे। आज को भी अल्लाह की हुक्मे है तो वो दुआए नूर पड़े नहीं है, ये सोचकर कि मेरी आंखें मेरे दिल में रज, इस पर इख्तियार किसका है? तो यार अल्लाह का है, तो फिर उसके ऊपर मुझे अल्लाह ताला ही पर रखें। बस हम अपनी अकल से सोचते हैं के रंग से बहुत सारे इतराजात, जब अल्लाह तो फिर कह दीजिएगा अल्लाह नूरन दिन नूर कर दे और मेरी जुबान को नूरानी दे वसम में कान गंदी बातें सुनना न इस्लाह बसरी नूरन और गांवों को नूर कर तेरी आंखें देखें ना को प्रोटेक्ट करने अल्लाह तला के जात पर एतराजात करते हैं। वमिन फौकी नूरन मेरे ऊपर नूर कर दे, यानी मेरे जो ऊपर वाले लोग हैं, अरे जो लीड्स इन लीड्स हैं, और इस तरह से फौकियत को आप किसी एंगल से भी समझ, नूरन डिपेंडेंट्स मेरे बच्चे मेरे मुलाजिम मेरे काले इनको भी नूरानी कर दे। वन जमीनी नूरन अल्लाह मेरा दाया साइड नूरानी हो जाए, यानी नेकियां करना मुझे आसान लगे। वन शमाली नूरन और मेरी बाई तरफ नूर आ जाए, यानी गुना करने मुझे। वमिन अमान नूर आगे खल्फ नूरन पीछे नूरन आगे कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे काम कर रहा हूँ जो मेरे लिए कयामत के दिनों का जरिया बने, और पीछे नूर के मैं सदका जा रही मेरे बाल दौरानी हो जाए, यानी मेरे बाल ऐसे ना हो कि जिनको देखकर मुसलमान होने का एहसास ही ना हो। मेरे बाल दूसरों को मायल करने वाले नहीं बल्कि मेरे बाल तेरी दात वाले हों। वफी बशरी नूरन मेरी स्किन मेरी जिल्द मेरी चमड़ी ये सब नूर वाली, इस पर किसी गैर की नजर ना पड़े। अल्लाहुम्मा जाल ली नूरन फी कब्री, फिर अल्लाह मेरी कब्र में भी ये नूर भर दे।
नूरन फी इज़ामी, मेरी हड्डियों में नूर, वजिदनी नूरन, मेरा नूर बढ़ा दे, वजिदनी नूरन, वजिदनी नूरन, और नूर को बढ़ा दे, वहाब ली नूरन अला नूर, और मुझे अब नूर नूर के ऊपर फिर नूर लेने वाला बना। ऐसे लगा मुझे एकदम कि सबीर जन्नत के बाद मुझे नूर करने की भी तौफीक दे। बहुत दफा आपने ये दुआ पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन आज इसको पढ़ते वक्त क्या आपने सूरत नूर की रोशनी कदर महसूस की? हकीकत यह है कि नूर क्या है? अल्लाह का नाम है। इसी सूरत के 5 रुकू में हम पढ़ेंगे। अल्लाह नूर समावाती वलर, तो गोया क्या? लेकिन अल नूर का लफ्ज देख ले तो आप देख सकते हैं कि सूरत के अहकामात कितने नूरानी होंगे। आप कह सकते हैं कि ये सूरत लोगों को रोशन मिजाज बनाने वाली सूरत है। आज के दौर के मुस्लिम्स को वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम से निकाल कर वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम है, क्योंकि आज के दौर का बहुत बड़ा एक पैगाम भेजा था और कहा था, अल्लिमु निसाकुम सूरत नूर, अपनी औरतों को सूरत नूर पढ़ाया करो। मदनी सूरत है, तो सूरत हशर के बाद नाजिल हुई थी। 64 आयात है सिर्फ, लेकिन हकीकत में हर आयत एक चमकता हुआ मोती है। और इसमें ना सिर्फ ये कि पर्दे और हिजाब की बातें हैं, बल्कि माशर्ती जिंदगी के खूबसूरत कवानीन भी सूरत में दिए गए। इस सूरत के नजूल से पहले तकरीबन मक्का के 13 और मदीना के 6 साल गुजर चुके थे। तो आप कह सकते हैं कि 13 और 6 कितना हो गया? 19 साल हो चुके थे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी का पैगाम आए हुए। मक्की सूरतों में खूब ईमान की नरिशमेंट हुई, सहाबा का तज़किया किया गया, युज़क्कीहिम की सूरत में उनको वो सारी चीजें बता दी गई कि जिससे किसी माशरे में अमन चैन आता है, यानी अल्लाह का तारुफ हो गया था। फिर मदीना में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फर्ज हुई, रोजा फर्ज हुआ, जुम्मे की नमाज फर्ज हो गई। फिर मदीना के अंदर आने के बाद आप देखिए कि एक मुस्लिम माशरा बन गया। सन 5 हिजरी में सूरत अलहज़ाब नाजिल होती है। सूरत अलहज़ाब का जब मौका आएगा वहां डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि इस दफा जो सूरत करवाऊं वो आज के माहौल को सामने रख के करवाऊं, ताकि हम देखें कि आज मुसलमानों पे जो हमले हैं, अल्लाह के नबी के दौर में भी कुछ इसी किस्म के हमले थे। तो याद रखिए कि जहां अल्लाह के नबी पर ये कुरान नाजिल हो रहा था, मक्का में तो अपने ही थे, आप कह लीजिए कि आप अपने खानदान के हाथों परेशान थे, और वहां आपकी जात पे कोई कीचड़ नहीं उछाला गया, बिल्कुल नॉर्मल माहौल रखे गए। और बस उनको हर वक्त चिढ़ ये थी कि आप हमारे बाप दादाओं को और खुदाओं को बुरा भला क्यों कहते हैं। मदीना में नबी सल्लम जो आए तो असल में ऐसे ही जैसे आज मैं और आप नॉन मुस्लिम मुल्कों में आ गए। आप कह लीजिए कि मक्की दौर है आपका मेरा वो दौर जो हमने अपने मुल्कों में गुजारा। लाख बुरे ही थे लेकिन अपनों में थे। अपनों में इंसान की खूबियां भी छुपी रहती हैं, खामियां भी छुपी रहती हैं, लेकिन मदीना में आप बिल्कुल इसको टैली कीजिए कि एक मशरकी माहौल का शख्स जब मगरबी माहौल में आ जाता है। और आज चूंकि मीडिया इतना आम हो गया, तो उसने ये सारी पाबंदियां भी खत्म कर दी और किस तरह से ये सब कुछ होने लगा, तो वहां मुसलमानों का इंटरेक्शन जो होता है यहूद के साथ साथ मुनाफिकीन से हुआ, ये नबी सल्लम से बैर रखते थे, जिसको आप कह सकते हैं कि राह जाते का बैर था इनको नबी सल्लम से। मौके की तलाश में रहते थे कि किसी तरह साहबे वही को बदनाम करे ताकि लोग इस वही से दूर हो जाए। बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी नॉन मुस्लिम की जो आज के दौर में, कोई बात नबी के खिलाफ मिल जाए, मुसलमानों के खिलाफ मिल जाए, ताकि उसको बुनियाद बनाकर आम बोले वाले लोगों को इस्लाम से दूर करें। इसका पहला हमला सन 5 हिजरी में हुआ था। वाकयात की तफसील अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन इशारा तो मकसूद ही है। नबी सल्लम ने अपनी फूफीजाद बहन का निकाह अपने मुंह बोले बेटे जैद से किया था। फूफीजाद बहन जो थी वो खानदानी हल्का सा भी ख्याल होता उसे निकाल का या उसके नौज बिल्ला आपका अफेयर होता तो आप क्यों शायद को उसके ऊपर माइन करते, आप खुद उनसे निकाह क्यों ना करते। हालांकि अल्लाह के नबी का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुश्रिकीन जब मुसलमानों को बदर की फतह मिली तो मुश्रिकीन के अंदर सांप दौड़ने लगे कि अब ये किस तरह का अजाब शुरू हो गया। चुनाचे गजब हर तरफ से मुसलमानों को फतह मिल रही थी, हालांकि आप देखिए मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था। ये साथ ही टैली करवा दूं कि जब आज के दौर में इस्लाम की बात होती है तो हम कहते हैं हम बेचारे मुसलमान, हमारे पास असलहा नहीं, हमारे पास मीडिया नहीं, हमारे पास साइंस की तरक्की नहीं। तो अगर आप देख लीजिए कि उस दौर में मुसलमानों की तादाद कुफार के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर, मुसलमानों के हथियार बिल्कुल थोड़े, मुसलमानों के पास मर्दमशुमारी उस वक्त में आप कह सकते हैं 1/10% थे टोटल आबादी का, बिल्कुल थोड़े थे। साजो सामान कोई नहीं, मुआशी असर रसूख मुशरिकों के पास था। आप देखिए कि इज्जत उनकी थी, खाना काबा की वजह से पूरे अरब और अजब में उनकी बाती। ऐसे वक्त में मुसलमानों की दावत तो एक नई दावत थी, चंद लोगों की हमदर्दियां थी सिर्फ इस्लाम की कॉज के साथ, लेकिन बदर से खंदक तक हर जंग में मुसलसल इस्लाम को जो फतह हुई तो मुशरिकीन परेशान थे, कैसे काटें इनको, कैसे तोड़ें, कैसे बदनाम करें। उनको समझ नहीं आती थी कि आखिर इनकी कुव्वत क्या है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज भी मुसलमानों को समझ नहीं आती कि इस्लाम के काम होते कैसे और होंगे कैसे। उनकी नजर फौरन लोगों की जेबों और उनके घरों पे और उनके दिलों पे होने लगती है। हालांकि तारीख गवाह है कि मुसलमान हमेशा थोड़े रहे, कमजोर रहे, रिसोर्स ना होने के बराबर कि मुसलमानों को नहीं तोड़ सके। दिन ब दिन नबी सल्लम के साथ लोगों की मोहब्बत और इस्लाम जो था वो लोगों के अंदर मुनाफिकीन का ये सोचा, और पीछे हाथ हमेशा यहूद का था कि किसी तरह अल्लाह के नबी के घर आने को बदनाम करना। हिजरी में किया गया हजरत जैनब के साथ नबी सल्लम का निकाह जो सरासर अल्लाह का हुक्म था। कुरान में आप आयत पढ़ेंगे, अल्लाह कहते हैं हमने उनको ब्याह, बाकी निकाह आपके जमीन पे हुए। गुजरा एक साल ही नहीं गुजरा था अभी, सन 6 हिजरी आ गया, गजवा बनू मुस्तलक था। कल के सबक में उसकी मजीद तफसीलात थोड़ी सी बता दूंगी, लेकिन गजवा बनू मुस्तलक एक दूसरा मौका बन गया जब लोगों ने नबी के घराने को बदनाम करने की कोशिश की। सन 5 हिजरी में जैनब की वजह से आपको बदनाम किया गया, तो छह हिजरी में हजरत फाइना के हाथ देकर यह साबित किया कि जो मर्द अपनी बीवी को ही सेट नहीं कर सका फिर वो दूसरों को कहाँ देगा। लिहाजा नुकसान क्या हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ लोगों के अंदर बातें फैली, तो उस मौके पे फिर सूरत नूर नाजिल हुई। आप देख सकते हैं दोनों सूरतों में माशर्ती काम आता है और दोनों ही की बुनियाद पर अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंची। कभी आप इस चीज को आज महसूस करके देखें तो आपको दीन लेना आ जाए और मुझे देना आ जाए। जब तक दिल पर चोट नहीं पड़ती, अल्लाह का कलाम दिल में नहीं जाता, नरम गरम बिस्तरों पे बैठकर ये दीन नहीं समझ आता। इस दीन के लिए इंसान को खुद को तोड़ना पड़ता है, अपने पर इल्जाम लगवाने पड़ते हैं। अगर अल्लाह के नबी पर ये बातें ना पड़ती तो इतने सख्त अहकामात मुआशरे में आने ही नहीं थे। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि शाबान 6 हिजरी में मुसलमानों को जब खबर मिली कि मुसलमान नबी सल्लम को इत्तला मिली कि कुछ कबाइल है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, चुनाच अल्लाह के नबी ने उनके लिए तैयारी का हुक्म दिया और उस साल आपके साथ हजरत आयशा रसूलल्लाह तआला थी। कल के सबक में यानी अगले सबक में इंशाल्लाह आपको इसकी मजीद बातें बताऊंगी, लेकिन आज वापस चलते हैं इस सूरत के बुनियादी थीम पर। सूरत नूर में किसी सोसाइटी के अंधेरों को दूर करने की बात है। चलते हैं सूरत साथ शुरू कर लेते हैं क्योंकि इसका आगाज ही हमें बहुत कुछ सुझाने वाला है और साथ साथ फिर हम इसमें आज के दौर के फितनों को भी देखते जाएंगे और कुछ कहे बगैर सुने बगैर कवायफ और जिसको आप कह सकते हैं फिगर्स एंड फैक्ट्स बोल बोल के बताएंगे कि आज के दौर के सारे मसाइल का हल इस सूरत को ना सिर्फ ये कि सुनना सुनाना बल्कि इस पे अमल करके इसको अप्लाई करवा देना। सूरत नूर का जो आज का सबक हमारे पास है, इसमें शुरू से तमहीद है। तमहीद भी इतनी जबरदस्त है कि जिससे दिल खोल दिए गए कि देखो तुम अल्लाह पर यकीन रखो कि वो कोई छोटी हस्ती नहीं है जिसने इतने खूबसूरत तरीके से ये कलाम दिया, उसकी बातों को सुनो। दूसरी चीज हम इस सूरत में जिना और जिना से मुतल्लिकात देखेंगे। जिना क्या होता है, क्या उसकी कबाहतें हैं, इस्लाम उसके इतना खिलाफ क्यों है, इंशाल्लाह हम अगली दूसरी ही आयत के अंदर इसको देख लेंगे। फिर इसके बाद लियान, यानी शोहर या बीवी का एक दूसरे पर जिना का इल्जाम लगाना और उसके बाद उससे खुद को बरी करने के लिए कस्में खाना, लियान और उससे मुतल्लिक जो है उस मसाइल हम देखेंगे इसके अंदर। फिर तीसरी चीज जो आज के सबक में हमारे सामने आएगी वो है कज़फ। कज़फ कहते हैं किसी बेगुनाह औरत पर तोहमते जिना लगाना, किसी की बेटी को, किसी की बहू को, किसी के फलां को, बेटे को बुरा भला साबित करने के लिए ऐसी बातें कर देना। ये चीजें इसमें हम देखेंगे किस तरह से अल्लाह ताला ने इसकी सख्ती की है और हम सब के लिए सबक भी है कि जिस तरह शर्मगाह को की हिफाजत करनी है, इसी तरह जुबान की भी हिफाजत करनी है। और आखिर में फिर हम देखेंगे कि अल्लाह का फजल और उसकी रहमत क्या होती है। आइए आयतों को साथ लेकर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनजलनाहा व फरदनाहा व अनजलना फीहा आयातिन बैजिनात। हमने इस सूरत को नाजिल किया है और हमने इसको फर्ज किया है और हमने इसमें रोशन आयतें नाजिल की है। क्यों की है? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम याद रखो, ताकि तुम्हें पता चले कि अल्लाह का कलाम कितना जामे। आपने देखा कि सूरत का आगाज बगैर किसी तमहीद के, और तमहीद किसी भी सूरत का हुस्न होती है उस वक्त जबकि उसमें मुख्तलिफ मजामीन हो। अमूमन हम देखते हैं कि मक्की सूरतों के शुरू में हरूफ मुकत्तात आते हैं और कुराने पाक की सिफात का तذکرہ होता है और कुछ सूरतों में नफ्स अल्लाह सुभान व तआला के नाम होते हैं। मदनी सूरतों को अगर आप देखें, कुराने पाक की आगे जाके भी देख सकते हैं 27वें पारे की 28वें की, तो अमूमन सब्बह लिल्लाह, यानी कुछ ना कुछ एक दो चार जुमले ऐसे जरूर होते हैं जिसमें ये बात होती है। लेकिन सूरत नूर, इसके आगाज में ही अल्लाह ताला ने सूरतुन का लफ्ज नाजिल करके हम सबको एक दावत दे दी कि वाइन कुंतुम फी रोइबे मिम्मा नज़लना अला अब्दिन फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही। यानी इस पे पहला कमेंट तो यही ले लीजिए मेरी तरफ से कि ये सूरत बकरा के उस चैलेंज कि जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को और कुफार को सबको कह दिया था कि अगर तुम्हें अल्लाह का ये कलाम पसंद नहीं तो फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही, जाओ फिर तुम इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। यानी अगर तुम्हें सूरत नूर पसंद नहीं तो जाओ फिर तुम आज अपने सारे बड़े बड़े दिमागों को जमा करो और इससे खूबसूरत अहकामात और कवानीन लाकर दिखा दो, लेकिन तुम नहीं ला सकते। फाइलम तफलू वलन तफलू, नहीं कर सकते तो फिर इसी को पढ़ लो। तो हम इस सूरत को पढ़ेंगे इस मोहब्बत में कि ये हमारे रब ने नाजिल की है। सूरत अनज़लनाहा, हमने इसको नाजिल किया। क्या पूरा कुरान अल्लाह का नाजिल करता नहीं है? है, लेकिन इस सूरत को अलग से कह देना ये है जुज में से, कुल में से जुज का जिक्र करना। और लफ्ज सूरत भी नकिरा में आया है। इसको अगर हम तफहीम के लिए पढ़े, तफहीम क्या होता है? मोटा करना। यानी एक चीज होती खास, ये एक सूरत हमने खत पढ़ाई नाजिल की और दूसरा के सूरत हमने नाजिल की। दोनों में फर्क क्या है कि अगर असूरा होता तो मतलब होता कि ये खास चीज है जो हमने पढ़ी या हमने नाजिल की, लेकिन यहाँ सूरत उनको नकिरा में लाकर ये बता दिया गया कि इस सूरत के अंदर जो बात छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी है वो हमारी तरफ से, गोया के बिगड़े हुए जहनों के लिए ये एक ताजियाना है। किसके किसी हुक्म को, किसी मौलवी का हुक्म ना समझना, किसी दर्द वाले का हुक्म ना समझना, आज के किसी बैकवर्ड दीनदार की सोच ना समझना, इसके अंदर जो कुछ आया है इसको हमने नासिल किया। आपने भी नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी भी है पहले से ये सूरत, तो मैं अगर उसको सामने रखते हुए कह दू ना सूरत अनजलनाहा, तो इस सूरत में आने वाले अहकामात अगर एक एक बात कर दूं, जिना की सजा हमने नाजिल की, लियान की सजा हमने तरीका दिया, पर्दे के अहकामात हमने दिए, औरत और मर्द के अख्तलात की बातें हमने की, बल्कि आपको होमवर्क दे देती हूँ, सूरत अनज़लनाहा का लफ्ज लिख लिया आपने, इधर पढ़ भी लिया, इसके अंदर आने वाले सारे अहकामात की लिस्ट बनाए अपने इन्हीं नोट्स पर जो आप लिख रहे हैं, एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक एक इंच का कॉलम छोड़ दें, जहां कोई हुक्म आएगा रूस में से अमर आएगा आप उधर लिख दें, जैसे आप शुरू में ही जिना की सजा आ रही है, फिर आगे लिखते जाइए, और सूरत पूरी होने के बाद सूरत उनके नीचे वो सारे कामात लिख के आगे लिखिए, अनजलनाहा अनजलनाहा, ये हुक्म हमने नाजिल किया ताकि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह की जात ने ये कामात देकर लोगों पर कितना बड़ा एहसान किया, और सिर्फ नाजिल नहीं किया वो फरदनाहा, फर्ज किया इसको, फर्ज कहते हैं किसी सख्त चीज को काटना, इसीलिए फराइज जो है हम पर ये सख्त है, करना पड़ेगा, रोते धोते मरते जीते ये तुमको करना ही पड़ेगा, ये तुम्हारे ऊपर हमने इसलिए नाजिल किए हैं ताकि तुम करो, तो गोया के अल्लाह ताला ने यहाँ याद दहानियां करवा दी कि तुम पढ़ो, वो अनजलना फीहा आयातें बेशिनात, तीसरी बात उसी की ताकीद है, हमने नाजिल की इसमें रोशन आयतें, कितनी आयतें इसकी 64 आयतें, सूरत कौन सी है नूर रोशनी वाली, अगली सूरत है फुरकान, उसमें भी रोशनी का मानी आता है फर्क पैदा करने वाली, तो कह सकते हैं कि इसकी 64 आयतें बय्यन आयतें, मुबहम नहीं, अनक्लियर नहीं, वेरी क्लियर मैनिफेस्ट ट्रूथ। आज के दौर में बहुत सारे फितनों में फितना के समझ नहीं आती क्या करें, क्या पर्दा करना चाहिए, निकाब है हिजाब है, ये जिना ही है वाकई, ये तो लिविंग टुगेदर है, ये तो बस बॉयफ्रेंडशिप गर्लफ्रेंडशिप है, आज लोगों ने इस्लाम के वो बुनियादी कामात जिस पे कभी किसी को इतराज नहीं हुआ हमारी तारीख में, उस पे भी शक पैदा करने की कोशिश की, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ये ना समझ में आने वाली बातें नहीं है, ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये कोई ऐसी सस्पेंस स्टोरी नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं चला, एक एक बात समझ आती है, सवाल पैदा होता है आज लोगों को क्यों नहीं समझ आती, तो इसका जवाब लिख लीजिए, जो मानता है ना उसको समझ आती है, और जो ना मानने समझ आती, ये सारे कामात हम इधर पढ़ेंगे, करें, और याद रखिए हर दौर का एक फितना होता है, आज के दौर का फितना बेहयाई का फितना, वबा के तौर पर फैली हुई है ये बीमारी, डिस इंफेक्शन आज सोसाइटी को, ठीक है, समंदरों पे पानी बनता है, बादलों में चला जाता है, हवाएं जो है वो पोलन ग्रेन्स को इधर से उधर ले जाती हैं, ये इंसान इस कायनात में क्या काम कर रहा है, तो आप कह सकते हैं इंसान इंसान प्रोड्यूसिंग मशीन है, पहले अपनी बात को समझ लें, इंसान इस दुनिया के कारखाने में बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन है, और ये मशीन किस फैक्ट्री में लगती है, उस फैक्ट्री को घर कहते हैं, होम स्वीट होम,
इस्लाम का जो मिजाज था वो ये था कि इंसान अपने जरिए से जो बच्चे पैदा करे आगे से वो सेहतमंद बच्चे हों, इस सोसाइटी को, इस दुनिया को सेहतमंद जहन दे। इसके लिए फितरत ने एक बड़ा खूबसूरत निजाम बनाया था आयातें बैनात का। मर्द और औरत को जिस तरह बचपन से हर जरूरत उसकी पूरी की गई, पैदा होते ही माँ के जिस्म से दूध भी मिल गया, थोड़े थोड़े दांत आने लगे तो खुराक भी मिल गई। अल्लाह ने सारी जरूरियात तदरीजन हमारी पूरी की है ना। स्कूल जाने के काबिल हुए तो अल्लाह ने हमें स्कूल भी दे दिया, लिखने के काबिल हुए तो कापी पेन भी दे दी। इसी तरह इस्लाम का मिजाज क्या है कि जब बलूगत प्यूबिटी मिच्योरिटी शुरू हो, जब दिल में इस किस्म के जज्बात आने लगे, तो बस उसके उभरने के फर्स्ट थोड़े ही अरसे के अंदर इनकी फुलफिलमेंट का जायज इंतजाम कर दो। और नबी सल्लम की अहदीस को जब देख ले तो फरमाया तीन चीजों में जल्दी करो, जिसमें एक क्या है कि बालिग होने पर बच्चों के निकाह को जायज कर दो। जब भूखे को वक्त पे खाना मिल जाए तो वो इधर उधर खाना नहीं ढूंढता। इसी तरह जब जिस्मानी ख्वाहिश पूरी हो जाती है जायज जगह से, तो फिर इस तरह की खराबियां जिसको आज के दौर में बेहयाई और फितने वाली चीज कहेंगे वो खत्म हो जाती है। जाहिर बात है, खाना खाया और उसको आप दोबारा के खाना खाओ, उसके सामने आप खूबसूरत खाना भी रख के उसको कशिश नहीं होगी। इस्लाम का भी ये मिजाज है। एक मर्द और औरत की सारी जरूरियात पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत नॉर्मल सी जिंदगी गुजर रही है जिसमें सारे जज्बे पूरे हो गए। लेकिन जब इससे ऑपोजिट हालात हो, जो आज है कि निकाह 18 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकता और जिना के लिए कम से कम कोई मुद्दत की गुंजाइश ही नहीं है, हर मौके पर हर जगह हालात और असबाब वो रखे। एक दो जुमला लिख लें, फायदा होगा आपको अगली आयत को पढ़ने से पहले। और वो क्या है कि बेहयाई, यानी जिसको आप कह सकते हैं इनडिसेंसी, ये जिना की तमहीद है। यानी जैसे किसी भी काम को करने से पहले उसकी एक बुनियादी चीज होती है ना, तो बेहयाई जो है ये जिना का इब्तदाई है, जिसको आप कह सकते हैं न्यूडिटी, करप्शन, खराबी, ये सब कुछ है। अल्लाह ताला ने जहां जी जो बात की ना कि वानजौना फी आयातिम बैजिनात, हमने इसमें रोशन निशानियां उतारी। कुरान की ये आयतें, अहकाम इतने क्लियर थे कि इनको आम किया जाता तो दुनिया में रोशनी होती। मकसद भी इन आयतों का क्या था, लअल्लहुम तज़क्करू, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। आज आप और मैं जरा लफ्ज तज़क्करून पे गौर करें, जिक्र है इसमें छुपो, नसीहत लो, होशमंदी पकड़ो, इससे फायदा लो, मॉरल लो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाए, तुम्हें तुम याद रखो। आज हम इस किताब से क्या लेते हैं, लअल्लकुम तुबर्रकून, बरकत लो, इस किताब से सवाब लो। कुरान से जब तज़कीर का पहलू कम हो जाता है ना, तो दुनिया में बेहयाई पैदा होती है। आज हम जितनी भी बेहयाई इर्द गिर्द देखें, ईस्ट में या वेस्ट में, मीडिया पे या सिनेमा में या लाइव लोगों के मामलात में, उसकी वजह यह है कि हमने आयातें बैनात को छुपा दिया। माने पहले मैं और आप अपना ये जुर्म माने बीइंग अ मुस्लिम, कि हमने इस किताब को आम ना करके लोगों को अंधेरों में डाल दिया। इमेजिन कीजिए कि अंधेरी रात है और आपके हाथ में टार्चे सिर्फ, और नीचे समंदर भी है या खाई है आग की, और रास्ता बड़ा पतला है, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं उधर से। टॉर्च आपके हाथ में थी, अगर सिर्फ आप एक टॉर्च की रोशनी में चलते ही जाते तो लोग आपके पीछे लाइन बना के आ जाते, तो बच जाते ना तबाही से। आपने किसी भी वजह से टॉर्च को बंद कर दिया या छुपा लिया, सोचा ये कि बस इससे मैं रास्ता देखूं दूसरों को ना दिखे, नुकसान क्या होगा? आपसे पीछे जितने लोग हैं उनमें जो खाई में गिरा, जो इधर गिरा उधर के, उसके जिम्मेदार आप हैं। आज उम्मते वसत ने ये जुर्म किया कि आयातें बैनात को छुपाया, तो लअल्लकुम तज़क्करून वाली कैफियत ही ना हुई। देखिए आपको कितनों को इस जुर्म की शिद्दत का एहसास हुआ, दिल से वो हाथ खड़ा करें, वरना बात नहीं बनेगी। बहुत कम लोगों के एहसास हुआ है। मैं दोबारा बात करती हूँ, आप पूरी दुनिया से बेहयाई करप्शन को खत्म नहीं कर सकते सजाएं पैदा करके, कवानीन बनाकर और इनको खूबसूरत नाम देकर, जब तक इस कुरान का नूर घर घर नहीं पहुंचेगा। कि हम मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए अब अगली आयत में चूंकि जिना की सजा है, जो डर लग रहा है कि इधर मैंने इसका तर्जमा आपके साथ दोहराया, उधर आपके दिमाग में आना है हाँ ये कोई दीन है, देखो इतनी सख्त सजा है। चूंकि सूरत का आगाज सजाओं से हो रहा है तो इतराजात शुरू हो जाते हैं, और अगर ये सारी बातें जो मैं बड़ी कोशिश कर रही हूं कि ना करूं, ये किए बगैर अगर आपको मैं पढ़ा दूं कि अज़ानिया तो वज़ानी फजली दुकुल्ला वाहिद मिन हुमा मियाता जल्दा, कि जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द दोनों में से हर एक को 100 100 कोड़े मार दो, और वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फी दीनिल्लाह, और तुम्हें ना रोके इनके साथ मेहरबानी अल्लाह के दीन को नाफिज करने के मामले में, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम ईमान रखते हो यौम आखिर पर और अल्लाह पर। तो आप में से कई लोगों के दिमागों में क्वेश्चन आएगा कि ये इतनी सख्त सजा क्यों, और इस पे और सोने पे सुहागा कि वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतु मिनल मोमिनीन, के जो जानी को सजा देनी है, जानिया को वो अकेले में नहीं देनी, कम अज कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 1,000 जितने भी लोग हैं उनके सामने दो। अब देखिए इसमें तो इतराज बरा इतराज इतना कुछ दिमाग में आने लग गया, तो फिक्र लग जाती है कि कहीं हम लोग जो यहाँ सवाब की नजर से और हिदायत की नजर से पढ़ने बैठे थे उन्हीं के दिमागों में कुछ क्वेश्चन आ जाएं, तो जरूरत है इस बात की कि हम थोड़ी सी बात पहले कर लें, ताकि हमें पता चले कि इस्लाम का मिजाज कैसा खूबसूरत है, एकदम किसी चीज को नाफिज नहीं करता। और चूंकि सजाओं पे बात हुई है, तो आज के दौर पर इस्लाम पर जो हमले हैं ना, उसमें एक बड़ा हमला तो इस्लामी सजाओं पे। आज के दौर में मुसलमानों को जो कहा जाता है अमूमन क्या कहा जाता है आपको सबको पता है, मैं दोहरा देती हूँ, शिद्दत पसंद है, टेररिस्ट है, बारबेरिक है, रुज्जत पसंद है, और बहुत ही ज्यादा सख्त लोग हैं। सुनिए कभी ये बातें, इस्लामी शरीयत के निफाज की जब भी कभी किसी मुसलिह ने कोशिश की तो एतराज गैरों से ज्यादा अपनों की तरफ आता है कि इस्लामी सजाएं बख्शियाना, चोर का हाथ काटो, तोबा तोबा, देखो जिना क्या हो गया, छोटा सा अमल बिचारों से भोलपन में मासूमियत में, और कहते हैं उसको 100 कोड़े मारो, होता कि नहीं होता। तो वजह क्या है, पहली बात लिखिए कि आज मुसलमानों को जो ये गलत नाम दिए जाते हैं उसकी वजह सबसे पहली लाइल्मी, लोगों को असल इस्लाम का इल्म ही नहीं है। फिर दूसरी इसकी वजह है गाफिल और ला इल्म मुसलमानों का अमल, जिन्होंने इस्लाम के निफाज का आगाज भी किया तो सजाओं से किया, एकदम जाके लोगों को बता दिया कि इसका ये सजा है उसकी वो सजा है, हालांकि इस्लाम का मामला ये नहीं है। तीसरी एक वजह क्या है, इस्लाम से बुगस और दुश्मनी। अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं इंसानियत अंधेरों में डूबी हुई है, कुफर तो अंधेरे का नाम है, तुम पहले उनको इस्लाम की खूबसूरती दिखाओ, गैर मुस्लिमों तक ये नूर पहुंचाने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। अब देखिए कि किसी भी चीज की असल कब पता चलती है, जब आप उसको जानते हो। आज लोग इस्लाम को कितना ही बुरा क्यों ना कह दें, इस्लाम बुरा नहीं बनेगा इंशाल्लाह। वजह क्या कि इस्लाम इज पीस, कोयले को हीरा कह दें, हीरे को कोयला कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आज उन हाथों की जरूरत है आप जैसे लोगों के, जो इस्लाम के चेहरे पे पड़े हुए ये जो दाग है, इस्लाम के चेहरे पे जो लगे हुए दाग हैं इनको मिटा सके। आज अपनी रियलिटी के एतबार से नॉन मुस्लिम भी मान चुके हैं कि इस्लाम के कवानीन बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बातें बयान करके हम सबको बता दिया कि पहले अपने दिल की जमीन में अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करो, जितना ज्यादा हम इस चीज को देखेंगे उतना बात आसान होगी। तो इस्लाम का स्टाइल समझ लीजिए, बात आसान हो जाएगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, उससे ही सारी बात समझ आ जाएगी। एक जगह कहीं गड़ा है, खाई है, और पतला सा ऊपर रास्ता बना हुआ है, लोगों को पता नहीं चलता कि इधर खाई है, जो बंदा जाता है वो ना समझी में नीचे देखे बगैर नीचे घुसता है और उस खाई में गिर जाता है। अब एक इमेजिनेशन में आप पिक्चर बना ले, अब जो गया गिरा, जो गया गिरा, किसी को चोट लगी, किसी की टांग टूटी, किसी की हड्डी टूटी। अब हुकूमत क्या करती है, एक हुकूमत है वो क्या करती है, उस खाई के पास एक एम्बुलेंस खड़ी करते हैं कि जो ही को गिरेगा उसको एम्बुलेंस में डाल देंगे, चलो भाई अच्छी बात है, बर वक्त इलाज हो जाएगा।
एक उससे भी समझदार हुकूमत है, वो उसी के करीब उस दूसरे किनारे पे एक हॉस्पिटल बना देती है जहां टूटी हुई हड्डियों का इलाज होता है, ठीक है ना। लोग गिरते जाते हैं, वो एम्बुलेंस में डाल के उसको निकालते जाते हैं, निकालते जाते हैं। ये है एक तरीका का। एक तीसरी हुकूमत है, वो कहती है कि इस सारे काम की जरूरत क्या है, क्यों ना किसी तरह से इस खाई को बंद कर दिया जाए, मुमकिन नहीं है तो रास्ता बदल दिया जाए, और अगर ये दोनों ही नहीं मुमकिन तो फिर क्यों ना लोगों को अवेयर किया जाए, यहाँ कुछ साइन बोर्ड लगाए जाए, कुछ रोशनियां रखी जाए, कुछ टॉर्च लगाए जाए, एरो लगाए जाए, कोई कैट आईज लगाई जाए कि जो आए वो पहले से कॉन्शियस हो, नीचे से बता दिया जाए कि आगे एक खड्डा आने वाला है, ठहर जाओ, बच जाओ, ताकि लोग वहां केयरफुल गुजरे। आप मुझे बताइए कि दोनों में, तीनों में से कौन सा तरीका। तो इस्लाम का तरीका ये आखिरी है, लिख ले, इस्लाम प्रिवेंटेशन सिखाता है, प्रिवेंट सिखाता है। पहले ही कहते हैं उन रास्तों से ना गुजरो। हम सूरत बनी इसराइल पढ़ चुके, ला तकरबु जिना, जिना के करीब भी ना जाओ, वहां आपको बताया थे ना कुरबात जिना। इस्लाम वो सारे मैयर्स लेना सिखाता है जिसके बाद दुनिया में इनडिसेंसी फैलती है, जिसमें आप देख सकते हैं हम ये मजमून कहां से पढ़ रहे हैं, सूरत निसा की आयत नंबर 14 से, कि जो औरतें बाहर फैलाएं गंदगी उनको घर में बंद कर दो। वहां से लेकर सूरत नूर के, आप देखिए सूरत निसा में हल्का सा इस पे बात हुई, फिर उसके बाद हमने सूरत अल आराफ में लिबास की बात पढ़ी, न्यूडिटी से मना किया गया, शैतान के तरीके हैं, लिबास गलत कराता है, लिबास कपड़े अच्छे पहनो, उसकी बात हमने सूरत पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद आप देखिए कि हम लोगों ने सूरत आल इमरान, सूरत अल अनाम में बहुत सारी ऐसी आयतें पढ़ी जिसमें फुहश और मुनकर से रोकने की बात की गई, और फिर आगे हमने सूरत बनी इसराइल में जिना की कुरबात पढ़ी। आज हम सूरत नूर में दोबारा ये मौजूद, इतनी दफा ये बातें पढ़कर आपको क्या समझ आया कि अगर जिना खत्म करना चाहते हो तो बेहयाई खत्म कर दो, बेहयाई खत्म करना चाहते हो वो सारी चीजें खत्म कर दो जिससे जिना फैलता है। मक्की सूरतों में इसका इख्तमाम हुआ सूरत मारिज, वल्लजीना अगर आप पढ़ें, जिसमें मुसलमानों की बातें की गई कि जो बहुत ही समझदार लोग हैं, वल्लजीना हुमली फुरूजिहिम युहाफिज़ून। अभी हम पीछे सूरत मोमिनून में क्या पढ़ चुके हैं, 10 सिफात 10 आयतों के अंदर मोमिनों की एक सिफत पड़ी थी ना कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। तो पता क्या चला कि अगर जिना खत्म करना है तो दुनिया से वो सारी चीजें खत्म कर दो जो इसका रास्ता खोलती हैं। इस्लाम को जिना से बहुत बैर है, वजह क्या है, क्योंकि अब जिना की आयत सख्त है, तो उससे पहले समझिए, तो जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स का नारा सुना होगा ना अपने आज के दौर में, 5 बेसिक ह्यूमन राइट्स है, जिसमें सबसे पहले कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका जो दिल जाता है जाके बोले, कोई नहीं पीछे पड़ सकता। नुकसान क्या हुआ, बदतमीजी फैल गई। इस्लाम के 5 बेसिक राइट्स हैं, ये लिख लीजिए, मुश्किल लफ्ज है, मैं कोशिश कर रही हूँ आसान बोलूं, आसान लफ्जों में बोलूं, यानी इनको 5 बुनियादी मकासद-ए-शरिया कहते हैं। सबसे पहला ये कि इस्लाम चाहता है कि हमारी जान का तहफ्फुज़ हो, कोई किसी की जान ना ले, ठीक है, तहफ्फुज़ जान। इस्लाम ने इसके लिए क्या किया, कसास पढ़ चुके हैं पीछे, कत्ले खता भी पढ़ चुके, दूसरा भी पढ़ चुके, ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर से पुलिस का महकमा शुरू हो गया था। इंसान तो इंसान है, जानवरों के हकूक भी दिए जाते थे उस दौर में, आपको पता है। हजरत उमर का दौर पढ़िए, मैंने इस वीक स्पेशली उनके हालात सुने, इस सोच से, आपको पता कि कल यकम मुहर्रम थी ना, हजरत उमर का यौम शहादत था, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। शहादत हुसैन मनाने वालों को नहीं पता कि उमर का की शहादत भी मुहर्रम में हुई थी, जो इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। लेकिन बहरहाल किस्सा मसला ये कि हजरत उमर के दौर से ये शुभ शुरू हो गया था। ह्यूमन राइट्स भी थे, एनिमल राइट्स भी थे, हत्ता कि लोग घर बनाते हुए दूसरे हमसाए से पूछे बगैर घर की दीवार नहीं उठा सकते थे, ठीक है। दूसरा, इस्लाम एक और तहफुज देता है लोगों को, और वो क्या है कि उनका माल महफूज रहे, माल का तहफुज। उसके लिए इस्लाम ने चोरी की सजा रखी, कोई किसी के माल पर नजर डालता भी है तो क्यों डालता है, और हाथ बढ़ा लिया, कतईयत सूरत मायदा में पढ़ चुके, हाथ काट दो, कितना काटो, जितना काटना है, डिटेल्स गुजर चुकी। तीसरा, इस्लाम जो श्योरिटी देता है ना लोगों को, वो कहता है अकल का तहफुज, लोगों का ब्रेन ठीक काम करे, इसके लिए शराब को हराम कर दिया। शराब बिल्कुल मना कर दी गई, क्योंकि शराब से इंसान की अकल खराब होती है। 40 से लेकर 80 करोड़ों तक की सजा दे दी। फिर इस्लाम लोगों की इज्जत की तहफुज चाहता है और नस्ब की इज्जत चाहता है, इसके लिए जिना को हराम करार दिया। इस्लाम में इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस है कि जब कोई बच्चा पैदा हो तो उसको अपनी माँ का नाम, बाप का नाम, नानी, दादी, खाला, फुफ्फो, मामू सब का पता हो। फितरत के साथ है कि बच्चे को पैदा होते ये सारी मोहब्बतें मिलें। जिना होता क्या है, अगर इसकी लीगल टर्म लिखनी हो तो लिख लें, वही ताल्लुक जो शौहर बीवी का शादी के बाद हो वो शादी से बगैर हो जाए, इलीगल ताल्लुक। और बिल्कुल इसके अल्फाज भी इतने खुले होते हैं कि जुबान पे नहीं आते, लेकिन सिंपल वो हर काम जो शादी से पहले अलाउड नहीं, उसको किसी के साथ लिविंग टुगेदर के नाम पर, ही इज माई बॉयफ्रेंड, शी इज माई गर्लफ्रेंड के नाम पर, उसको मॉडर्न होने के नाम पर, उसको किसी भी नाम पे कहते हैं, इस्लाम उसको जिना कहता है। और याद रखिए, ये सिर्फ इस्लाम ही दुश्मन नहीं है। मेरे पास एक पूरी बुक थी, मैंने एक मौके पे उस पर दर्स भी पूरा दिया डिटेल के साथ, डॉक्टर फजल अली साहब की बुक है, कभी आपको मौका मिले जरूर पढ़े। उसका नाम ही जिना और उसकी हुरमात और उसके सद्देबाप और जराए, पूरी हिस्ट्री उन्होंने उसमें लिखी है कि क्रिस्ट ज्यूस इस बाइबल में यानी यहूद के दीन में कैसे जिना हराम था, और नसारा क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहि सलाम का तो आज भी कॉल मिल जाता है ऐसे लोगों के बारे में कि किसी औरत को शहवत की यानी लस्ट की नजर से देखना ये आंखों का जिना, और कमीनी औरत का नाम आता है बाइबल में जिनाकार औरत के लिए। ये वो लोग जिन्होंने आज इसको लाइफस्टाइल बना दिया। आज हमारे बच्चे जब ये चीजें बाहर देखते हैं तो कहते हैं अफसोस अफसोस, मैं क्यों मुस्लिम हुई? क्या मुस्लिम होने का मतलब है कुछ कर ही नहीं सकते? तो भाई अगर आप सही क्रिश्चियन होते आप तब भी नहीं कर सकते थे, और अगर आप सही ज्यूज घर में पैदा होते आप तब भी नहीं ये काम कर सकते थे। इवन पेगन कल्चर, देखिए हिंदू कल्चर पेगन कल्चर है ना, वो तो किसी का भी नहीं ना, अल्लाह के सिवा जिसका भी, उनमें भी ये चीजें हराम है। आप उनके भी जरा बुनियाद परस्त हिंदुओं पे और उनके बड़े फोर फादर्स पे जाएं, और हम लोग तो इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा हुआ तो हम तो बहुत साल साथ रहे, कभी आपने उनकी औरतों को पर्दा करते, चादरें सर पे रखते, साड़ियों के पल्लू रखते नहीं देखा? पहले तो दौर में वहां सब था। आज सिर्फ एक दीन है, सिर्फ ओनली वन रिलीजन जो जिना और उसकी कुरबात को हलाल करार देता है, वो कौन सा दीन है? नहीं, ना क्रिश्चियन, ना ज्यू, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना बुद्ध, और वो दीन है ख्वाहिश का दीन। ख्वाहिश परस्त मुसलमान, ख्वाहिश परस्त ईसाई, ख्वाहिश परस्त क्रिश्चियन, ज्यू, हर दीन के सिर्फ लस्ट लविंग लोग वो जिना और बेहयाई को अलाउड और पसंदीदा करार देते हैं, बाकी हर फितरी मजहब पे जो लोग मौजूद है वो जिना को बुरा समझते हैं। जिना और शिर्क एक साथ है, अभी पढ़ लेंगे आप अगली आयत में कि जहां जानिया और मुशरिका का नाम इकट्ठा आता है, और पीछे भी पढ़ चुके हैं आप लोग सूरह बकरा में इसका इशारा। क्यों? शिर्क अल्लाह के साथ बेवफाई है, मुशरिक अल्लाह के साथ बेवफाई करता है, और जिना करने वाली लड़की या लड़का अपने लाइफ पार्टनर के साथ खयानत करते हैं। आप कहते हैं वो तो है ही नहीं, अभी अभी तो मन मैरिड है। जितनी खयानतें की, जितने लीगल ताल्लुकात रखे, वो आने वाले शौहर की हक तलफी है। और एक लड़का भंवरा बन के जितनी जगह पे गया, उसने आने वाली जिंदगी में पाक दामन औरत जो उसको मिली उसके साथ खयानत की, तो इस्लाम इसको नापसंद करार कर देता है। क्यों नापसंद करार देता है? इसलिए कि इसमें नसब बिगड़ जाता है, आने वाले बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं किसका बच्चा हूं। और ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी, छह छह बच्चों की मां बनने वाली औरत भी कहती है कि मुझे आज तक शादी के काबिल कोई मर्द ही नहीं मिला, और हर कल्चर का बच्चा उसके साथ है, कोई गोरा, कोई काला, कोई नीग्रो, कोई कुछ, वो कहती है अभी तक वो मर्द मिला ही नहीं। आज क्यों मजहब का खाना खाली कर दिया गया फॉर्म्स में से? और आज वेस्ट में पलने वाले बच्चे इस बात के गवाह हैं कि आप बच्चों को जब किसी स्कूल में दाखिल करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे पेरेंट्स की किस्म पूछी जाती है। आर दे डाइवोर्स पेरेंट? तुम्हारे बच्चे डाइवोर्स्ड है, सॉरी तुम्हारे पेरेंट्स डाइवोर्स्ड है?
आर द मेरिट और अनमेरिट, तीनों में से एक किस्म लिखनी पड़ती है। और कई ऐसे फॉर्म्स आज वेस्ट मेस में कि जहां बाप का खाना खत्म कर दिया गया, कि औरतें कहती हैं हम तुम्हें क्या बताएं, हमें तो खुद नहीं पता। क्यों ऐसी बातें आप सुनते हैं कि 20 साल की होने तक एक लड़की 4 से 5 पार्टनर बदल चुकी होती है। ये सारी खराबियां इस खूबसूरत आयतों और सूरतों को आम ना करने की। आप देखिए कि जिना के साथ मुआशरे में इतनी खराबियां पैदा होती हैं, इतना नुकसान होता है कि इसका असर बेहतरीन फैक्ट्री यानी घर को खराब करता है, शौहर बीवी के ताल्लुकात खराब होते हैं, इंसान बर्दाश्त ही नहीं करता कि मेरा पार्टनर किसी और तरफ नजर डाले, फितरत खराब हो जाती है, मुआशरती बुराइयां खराब होती हैं, शादीशुदा जिंदगी है तो वो बर्बाद हो जाती है। जिन मर्दों में ऐसी गंदगी की आदतें पड़ती हैं, फिर उनका दिल ही नहीं खुश होता अपनी सीधी सादी बीवियों के साथ। गोया कि आप कह सकते हैं कि जिन्ना का असर हर चीज पे जाता है, जैसे बीमारियों में कुछ बीमारियां ना कुछ ऐसी हैं सिर्फ वही उस खराब होता है जिससे वो बीमारी होती है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिससे सारा जिस्म मुतासिर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इस्लाम ने क्या किया, निकाह आसान किया, छोटी उम्र की शादी तलाक का रास्ता खोल दिया। कि बाज़ औक़ात शादी सही जगह नहीं भी होती तो ये नहीं कि साथ रहते रहो और ताल्लुकात कहीं और रखो, नहीं, फिर तलाक का रास्ता भी है। फिर इस्लाम ने मौसीकी को हराम किया क्योंकि उससे इश्तिहा फैलती है। गाने जितना इंसान को जिना पे माइल करते हैं इतना कोई दूसरी चीज नहीं करती। साज म्यूजिक थरथराने को दिल जाता है, फिर उसी से खराबियां होती हैं। जहां शराब होगी वहां म्यूजिक होगा, वहां जिना भी होगा। आप किसी नाइट क्लब का सोचें तसव्वुर क्या आता है, यही सब कुछ है ना। कभी आपको दिन की रोशनी वहां दिखेगी, कभी वहां लोग कुरान पढ़ते दिखेंगे, वह फुल स्लीव्स और कवर्ड कपड़े पहनते हुए और लूज ड्रेस पहने हुए दिखेंगे। वो तो बर्बाद हो जाएगा, वो तो बैंक करप्ट हो जाएगा इदारा। इस्लाम ने शराब को हराम क्यों दिया करार? शराब भी आपको पता है इसलिए हराम है, आपको आज अंदर की बात बता दूं, शराब भी इसलिए हराम है कि इट लीड्स टू जिना। शराब में मत मारी जाती है, माँ बहन का फर्क नहीं पता, बेटी का फर्क नहीं पता। कई ऐसे वाकयात है कि शराब के नशे में बाप अपनी बेटियों के साथ गलत ताल्लुक कायम करते हैं, भाई भाइयों के साथ ताल्लुक खराब करते हैं। और एक वेस्टर्न रिपोर्ट मैं सुन रही थी कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर अपने घरों को पाक करना चाहते हो तो बहनों के भाइयों से बिस्तर अलग कर दो। ये नॉन मुस्लिम की आवाजें हैं। अल्लाह के नबी ने कहा 7 साल का होने पर अपने बच्चे को नमाज का हुक्म दो, 10 साल का होने पे उस पर सख्ती भी करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। दो भाई भी एक बिस्तर में ना सोए, बहनें भी ना सोए, भाई बहन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस्लाम चाहता है कि मुआशरा ठीक हो। जहां ये सब कुछ हो गया, सारी पेशबंदियां हो गई, तो उस मुआशरे में तो जिना होना ही कोई नहीं। आप खुद सोचे ना, आज के माहौल को देखें और ये सजा सोचें कि जानी और जानिया को 100 कोड़े मारो, तो तसव्वुर में आता है हर गली की नुक्कड़ पे से कोड़े लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे आता है ना। इस्लाम जिस मुआशरे में आता है, नबी का दौर देख लीजिए, कितनों को तारीख के दो दो चार वाक्य आते हैं जो हदीसों में आज ही मौजूद है। गामदिया औरत माएज असलमी, दो एक सहाबी थे, इसी तरह एक औरत नमाज के लिए सुबह मस्जिद गई और रास्ते में एक मर्द ने उस पर हमला किया और उसकी इज्जत खराब की। वो वापस आई, अल्लाह के नबी के पास आई और उसने मुकदमा दायर किया। तो आपने फिर उस मर्द को तो हाथ लगाई लेकिन औरत को छोड़ दिया क्योंकि वो मजबूर थी, कि आज किसी पे रेप हो तो उसका क्या मामला है। यानी ये सारी हद बनने के बाद सिर्फ इक्का दुक्का दो तीन वाकयात आपको पूरी नबवी जिंदगी में मिलते हैं। उमर अबू बकर के दौर की तो मुझे तो कोई मिसाल नहीं मिली, होंगी तो कहीं ऐसी होंगी जो होंगी। इसके बरक आज के दौर में जो कुछ हो रहा है, ये चंद रिपोर्ट की बातें सुना के फिर आपको इस जिना की जो थोड़ी सी डिटेल्स है उस पर बात कर देती हूँ कि आज के दौर में जिन मुआशरों को हम सिविलाइज मुआशरे कहते हैं और जो इतना शोर करते हैं इस हमारे इस्लाम के खिलाफ, आज यही तो परसेप्शन दे दिया ना लोगों को कि बस ये इस्लाम बैकवर्ड है और हम बहुत मशहूर हैं। तो ये चंद रिपोर्ट्स हैं, आप सुन लीजिए, अगर आपने पहले नहीं सुनी तो फिर फायदा होगा, नहीं तो दोबारा सुन लीजिए। शिकागो ट्रिब्यूनल 1992 से 93 की एक रिपोर्ट है कि 3,13,600 रेप एक साल में रजिस्टर हुए और इसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं है, उसको अलग गिनते हैं। आपको तो पेडोफीलिया, बच्चों की इज्जत पे हमला करना आज के इस दौर का सबसे बड़ा मसला बन गया। आज बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है टीचर्स के हाथों, स्कूलमेट्स के हाथों। एफबीए की एक रिपोर्ट है 1995 की कि वो कहते हैं कि 1 लाख में से 700 लोगों पर रेप होता है, एक साल में 20 से 30% औरतें जिस्मानी तशद्दुद का शिकार की गई, जिनमें से 1 मिलियन इलाज के लिए निकलती हैं और उनको शेल्टर होम्स में रखा जाता है। ग्रेड 7 यानी 7% बच्चियां जो ग्रेड 5 में पढ़ती हैं, यानी 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों में हर 100 में से 7 बच्चियों पर जिंसी हमला हो चुका है, जिसमें 34% उनके फैमिली मेंबर्स करते हैं, 58% उनके मिलने जुलने वाले लोग जो अंकल दर आंट्स और उनके बच्चे हैं, और 7% हैं जो गैरों के हाथों अब्यूज होती है। ये इनके फिगर्स हैं, ये हम नहीं बोल रहे, ये खुद बताते हैं, ये आपको भी मिल जाएंगे, आप जहां जाके सर्च करें आपको हर साल की रिपोर्ट अलग मिल जाएगी। हर 6 में से 1 औरत पर जिंसी हमला होता है, अमेरिका में हर 2 मिनट में किसी न किसी एक औरत पर जिंसी हमला होता है। 20 में से 12 साल से कम उम्र वाले होते हैं, यानी छोटी उम्र वालों पे ज्यादा हमले होते हैं। और आप अगर ये सारी बातें सुनने के बाद दिल में ये ख्याल लाएं कि ये सारा हो रहा है, तो फिर ये उसको बुरा समझते हैं। ये सब वो है जिसको वो क्राइम कहते हैं। आप लिखिए क्रिमिनल रिपोर्ट ऑफ यूएसए 1914, 1920, 32, 2014, लंबी लंबे आपको लिस्टों की लिस्टें मिल जाएंगी। इसमें वो नहीं है जिसको जान के मर्जी से साथ रहना, जिसको वो कहते लिविंग टुगेदर, शी इज माई बॉय गर्लफ्रेंड, ही इज माई बॉयफ्रेंड, ये नहीं है, इसको वो कहते हैं जायज है। और अगर आपको सीरत का वो सेशन याद होगा जो बिल्कुल पहले शुरू के एक आध सेशन में किया था, कि नबी सल्लम की आमद से पहले अरब के जो हालात थे, तो उसमें ये बताया था कि वहां जिना की जो किस्में थी उसमें एक जायज थी, और वो ये थे कि लड़की लड़का अपनी मर्जी से साथ रहे, लड़की राजी लड़का राजी तो क्या करे काजी, ये हालात है। उसको वो भी जायज कहते थे जिसको आज ये कहे, सिर्फ ये उसको सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं जिसमें दूसरे की मर्जी के खिलाफ हो। आप इसकी अगर रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको हैरत होगी ना कि जिन मुल्कों ने अपने आप को सिविलाइज्ड एडवांस तरक्की याफ्ता का हबल बन गया, बहुत अच्छे भी काम किए। देखिए आज हम जब इन मुल्कों की ये गलत चीजें पढ़ते हैं तो हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं इन्होंने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया, वाकई दिया, इसमें झूठ भी नहीं है, बात तो वो कहे ना जो सच हो। आज आप देखिए कि अगर वेस्ट को, वेस्ट से मेरा कोई मुल्क नहीं है, आज मेरी नजर में वेस्टर्न भी एक सोच है और ईस्टर्न भी एक सोच है, दैट्स इट। चाहे पाकिस्तान के गांव में रह के वेस्टर्न बन जाए, और अल्लाह की तौफीक से आप दुनिया के किसी एज पे भी पहुंच जाएंगे तो वहां भी आप ईस्टर्न रह सकते हैं। लेकिन आज इनके अच्छे काम है, एजुकेशन बहुत है, लिटरेसी रेट इनका 98% से ज्यादा है, चांद पे पहुंच गए, हबल बना लिया, रिसर्च कर ली, इनकी रिसर्च करता चीजें गैजेट, ये आईफोन, ये फुलां, इसे इस्लाम फैल रहा है। आपके व्हाट्सएप पर वाइबर किसने इजाद किए, और ये गूगल किसका कारनामा है, और ये फायरफॉक्स किसने बनाई, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है, ये सारी गौरों की है, अच्छे काम कर रहे हैं। आज उनकी की हुई रिसर्चेस से फायदे उठाकर लोग मुसलमान हो रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक वो चीजें साबित हो रही हैं, अच्छे काम बहुत किए उन्होंने, बीमारियों का इलाज कर दिया, कई चीजें दुनिया, कई बीमारियां दुनिया से खत्म हो गई, नई अलग बात है और आ गई। पुलिस का आप कहते हैं इंतजाम बहुत अच्छा है, औरतों को बड़ी आजादी है, इक्वलिटी, लेकिन क्या इन सब कामों के बाद वहां का कॉमन मैन खुश है? आम इंसान को हबल से क्या मिला अगर उसको साफ पानी नहीं मिल रहा? इतने रिसोर्सेज अगर हजरत दाऊद के पास होते और सुलेमान के पास होते, पूरी दुनिया में गुर्बत खत्म और पानी साफ हो चुका होता, बीमारियां खत्म होती। इस्लाम के साथ दुनिया के रिसोर्सेस मिलते हैं ना तो इंसानियत को नफा मिलता है, और इस्लाम के बगैर ये रिसोर्सेस मिलते हैं तो चांद पे तो कमंदे हैं और अपने मुल्क के मसलों की फिक्र नहीं है। तो लिहाजा आज वहां देखिए बेगर्जी भी है, झूठ भी है, सब कुछ मौजूद है, खुश नहीं है, घर सुकून वाले घर नहीं है। हफ्ते एक औरत की मैं बात सुन रही थी कि कई हफ्ते में अपने बच्चे से मुलाकात नहीं कर पाती, सारा दिन जॉब से थकी हारी आती है, अपने बच्चे को कहती है रात को नहला धुला के तैयार करके सुलाती हूँ, और सुबह 4-5 बजे उस सोते बच्चे को उठा के डे केयर में छोड़ती हूँ, सारा दिन वहां मैं अपनी जॉब पे रहती हूँ, वापसी पे जब उसको लेती हूँ वो फिर सोया होता है, घर आके एज इट इज उसको सुला के रात को एक दफा फारिग करती हूँ, और इस तरह कई दिन के बाद मैं अपने जागते बच्चे से बात करती हूँ। कई ऐसे बाप हैं वो कहते हैं हम जाते हैं तो बच्चे सो रहे होते हैं, और जब अब्बा जी घर पे हैं तो बच्चे नहीं है, ये आम कहानी है। शौहर बीवी लिख लिख के बातें करते हैं, ये खुशी वाला माहौल तो नहीं होता, ये तो होम स्वीट होम नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? इन सब से बरक्स एक सिंपल जिंदगी का तरीका, आप और मैं आज 2014 में ये बात कह रहे हैं ना, लिख के रख लीजिए, हम शायद होंगे भी कि नहीं आज से 10-20 साल बाद। आप देखिएगा वापस वो सारा सिस्टम वेस्ट अपनाएगा जो इस्लाम ने दिया। हम तो छोड़ते जा रहे हैं, वो लेते जा रहे हैं। ये खबरें आम है। आपको मैंने पीछे एक बात सुनाई थी कि एक दफा एक अमेरिका में किसी स्कूल में गई तो कहने लगी कि आज से 3-4 साल पहले जब मैं आई थी आपके स्कूल में तो वहां बच्चे और बच्चियां एक ही क्लास में बैठे हुए थे, आज आपने सेक्शन से अलग क्यों कर दिए लड़कियों और लड़कों के? उन्होंने कहा इसलिए कि हमारा स्कूल तरक्की नहीं कर रहा था, हमारे रिजल्ट्स खराब थे। फिर हमने सबने सर जोड़ के जब फैसला किया, देखा कि लड़के लड़कियां साथ बैठते हैं तो पढ़ने में तवज्जो नहीं देते, और जब से कहते हैं लड़कियों को अलग लड़कों को अलग किया तो हमारे स्कूल की कारकर्दगी अच्छी हो गई। ये उनकी रिपोर्ट्स हैं। वो कहते हैं कि जिस बैंक में या जिस इदारे में लड़कियां लड़के औरतें मर्द इकट्ठे होते हैं वहां की कारकर्दगी कम हो जाती है, वो ज्यादा वक्त अपने आप को शो ऑफ करने में और एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाने में डाल देते हैं, और जो बुरा लगता है ऐसे प्रोफेशन मुंह पे ना आ जाए तो बेहतर है। यानी इतनी तकलीफ महसूस होती है और इतनी कुर्बत हो जाती है औरतों और मर्दों की आपस में, जब वो आपस में होस्टिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, फर्क ही खत्म हो जाता है। उनको फर्क लगता ही नहीं है क्योंकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो रही नहीं है। तो जब हम इस्लाम के नाम पर खूबसूरत इस्लाम लोगों तक रखते हैं, ये सब कुछ जो अल्लाह ने दिया है इसको दुनिया की तरक्की के साथ लाते हैं, आप देखिएगा कि ये सब कुछ होगा। आज वो लोग जो खुद को सिविलाइज कहते हैं, आप देखिए कि इंसानी तशद्दुद के जितने आलात हैं ये दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बनते हैं। इन्हीं की रिपोर्ट है, डॉन की एक रिपोर्ट है 20 फरवरी 2001 में एक छपी थी कि इंसानी तशद्दुद के जो आलात हैं वो ताइवान, चाइना, कोरिया, इसराइल, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील में बनते हैं, और ये सारा प्रोग्राम अमेरिका में ट्यून इन होता है, और वो सारी चीजें अपने मुल्कों में बैन है जो दूसरी जगहों भेजते हैं कि लोगों पर तशद्दुद करो। आखिर ये कहां से बनती हैं चीजें? तो बात बहुत लंबी हो गई लेकिन जरूरत है इस बात की कि अगर हमें इस्लाम का ये मिजाज पसंद नहीं तो फिर हमें खुद अपने मिजाज को दुरुस्त करने की जरूरत है कि किस तरह से इस्लाम ये सजा देता है। आप जरा इस इस्लाम इस सजा की जरा असल भी देख लीजिए। अज़ानियत व ज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द को 100 कोड़े मारो। अब ये सजा कैसी है जरा इसकी रियलिटी पे भी थोड़ी सी बात हो जाए तो इंशाल्लाह आपको मजीद फायदा होगा। पहली बात देखिए कि लफ्ज जानिया पहले क्यों आया है? पहले जानिया आया फिर जानी आया, औरत का जिक्र पहले क्यों आया है? जबकि अगर आप सूरत मायदा की आयत याद कीजिए, बस सारी को बस सारे का, वहां चोर और चोरी करने लिए औरत का जिक्र, वहां मर्द का जिक्र पहले, यहां औरत का जिक्र पहले है। वजह मुफसरीन कहते हैं कि कमाना मर्द की जिम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हान तआला ने मर्द को कवाम बनाया। जो मर्द हलाल तरीके से कमाने की बजाय चोरी चकारी में पड़ता है तो उसका जुर्म बड़ा, पहली बात है, इसलिए मर्द का नाम बसारिक में आ गया। दूसरी वजह यह भी है कि मर्दों में चोरी करने का रुझान औरतों की नस्बत ज्यादा होता है, अमूमन चोर मर्द ही होते हैं। औरतें अपनी तबीयत के अतबार से डरपोक होती हैं, वो चोरियां नहीं कर सकती, छोटी मोटी कर ले और बात है। जबकि यहां जानिया का लफ्ज पहले क्यों आया? कि हया और अपनी इस्मत की हिफाजत ये औरत की फितरत में गुंदा हुआ है, औरत की जिम्मेदारी है कि अपनी इज्जत की हिफाजत करे। और दूसरी बात, जिना का फेल हो ही नहीं सकता जब तक औरत ना चाहे, इसीलिए तो कहा कि जान बचाते हुए अगर कोई मर गया तो वो भी शहीद है। औरत खुद को एक्सपोज करती है, औरत अपने दिल से नफरत खत्म करती है उन तमाम चीजों की, तो उसके नुकसान में क्या होता है कि फिर मुआशरे में गंदगी फैल जाती है। तो लिहाजा यहाँ जानिया फाइला है, मुअन्नस के लिए आ गया, कहा कि औरत का असल वजह असल औरत ही जल्द करती है, लिहाजा जानिया तो वह जानी। अच्छा ये भी तो आ सकता था ना, बस एक लफ्ज जानी कह के औरत मर्द को इकट्ठा कर दिया जाता, जैसे वजाजीना आमन आमनु क्या है, मुजक्कर है ना, उसमें ये तो नहीं हमें कहा जाता या अय्युल्लज़ीन आमनु वल आमिनात या मोमिनात, नहीं है ना, वहां मर्द और औरत एक ही सीगे में। तो यहाँ जानिया और जानी को अलग करके इस जुर्म की शिद्दत बता दी कि ऐसे गलत काम करने वाला मर्द या औरत हो पकड़े जाए पता चले तो क्या करो, फजलिदु कुल वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा। यहाँ लिख लीजिए ये सजा है कवारे अनमेरिड जानी और जानिया की, ठीक है? क्या सजा है? इधर तो पता चल गई 100 कोड़े हैं। अच्छा लफ्जों को पहले देख ले तो फिर और बात थोड़ी वाजे हो जाएगी। कुल्ला वाहिद मिन हुमा से पता चला कि लड़के को भी लगेंगे लड़की को भी लगेंगे, कितने लगेंगे? मियां तो जल्दा,
मियाँ कहते हैं 100 को, और जल्दा कलर जिल्द से है, जीम लामदार, कोड़ा विप जिसको आप कह सकते हैं, दुर्रा कहते हैं उर्दू में भी, इसको जल्दा क्यों कहते हैं? नंबर एक, ये स्किन से बनता है, चमड़ा होता है और चमड़े की चोट सख्त होती है, ठीक है। दूसरी वजह यह है कि इसको मारने का तरीका बताया गया कि इतनी जोर से मारो बस कि जिल्द पे असर पड़े, हड्डी ना टूटे, ये मुराद है। अब ये 100 कोड़े कैसे मारे जाएंगे? एक साथ भी मारे जा सकते हैं और 20-20 करके कई दिनों में भी मारे जा सकते हैं। सेहत देखी जाएगी जानी और जानिया की, हत्ता कि एक वाकया अल्लाह के नबी के दौर में ऐसा भी हुआ कि एक बूढ़े शख्स ने जिना किया। जब अल्लाह के नबी तक बात गई और फिर सजा देने का वक्त आया तो देखा गया कि वो कमजोर है, अगर उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे तो मारा जाएगा। तो आपने कहा कि 100 तिनकों वाली झाड़ू लाओ, उसको कहा एक दफा हल्के हाथ से उसको मार दो, कहा इसकी किफायत हो गई, ये है अल्लाह का दीन। तो 100 लगेंगे, दरमियाने लगेंगे, इतनी जोर से नहीं लगेंगे कि हड्डी टूटे, मुंह पे नहीं लगेंगे, और उसके बाद ना उस कोड़े के अंदर गिरा लगाई जाएगी। बाज लोग आज के दौर में, अब देखिए हम कोड़े के लफ्ज पे इसलिए परेशान हो जाते हैं कि हमने वही जल्लादी निजाम सुना हुआ फिल्मों में कि जो खूब जोर जोर से मारा है, हल्के हाथ से मारा जाएगा, इतनी आहिस्ता कि हजरत उमर ने जब एक शख्स को नसीहत की तो कहा कि इतना हाथ ना उठाना कि तेरी बगल खुले, हल्के हाथ से, दरमियाने हाथ से मारना। असल में तो ये शऊर को बेदार करने वाली, यकीन करें इससे ज्यादा तो सख्ती बाज़ स्टूडेंट्स के साथ मास्टर्स कर देते हैं, उनको फटियों से मारते हैं, तख्तियों से मारते हैं, हल्के हाथ की चोट होती है और ये करनी पड़ेगी। एक कोड़ा कम नहीं किया जा सकता, एक ज्यादा नहीं किया जा सकता। हदीस में आता है कि कयामत के दिन एक काजी को सिर्फ एक कोड़े की कमी पर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, कहा जाएगा तूने 99 कोड़े मारे, एक क्यों नहीं मारा? कह गया अल्लाह तेरी मखलूक पर शफकत की वजह से, यानी रहम आ गया। तो कहा कि अल्लाह अपनी मखलूक पर ज्यादा रहम करता है, इसको आग में डाल दो। इसलिए कहा कि तुम्हें उन पर वला ताखुस कुम बिहिमा राफतुम फी दीनिल्लाह, अल्लाह का दीन जब नाफिज होता है फिर नहीं किसी पे तरस आएगा। अच्छा अब ये बात होगी कब? जहां आप थोड़े से अग्रेसिव हो रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये सजा कब मिलेगी, जब 4 लोग अपनी आंखों से ये फेल होता देखें। अंदाजे नहीं, सपोजिशन नहीं, ये भी नहीं कि किसी को किसी के साथ अकेले देखा तो सपोज कर लिया, बिलफेल उसी हालत में देखना शर्त है कि जिसमें यानी ये अमल साबित होता है। और एक शख्स देख ले, जाके पुलिस को बता दे, उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। ये अगली आयत में हम पढ़ेंगे, सारा मजमून अभी समझ रहे। एक शख्स किसी का ऐसा काम करता देखेगा, जब तक 3 और गवाह नहीं लाएगा सजा नहीं मिलेगी ये, क्योंकि सजा सख्त है तो शराइत भी बड़ी सख्त है। फिर बालिग और आकिल, उन पे ये हद लगेगी। आम हालातों, कोई एडवर्स कंडीशंस ना हो माशरे की। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब ये हालात होते हैं जिसमें ये सब काम चारों को दिखाया जाता है, तो ये मोमेंट कब होता है? जब महफिलों में ये बिलफेल यानी ये कल्चर के नाम पे आम होने लगे हैं। यानी मैं कहती हूँ सिर्फ इस एक हुक्म पे अमल हो जाए ना आज, कि जिधर 4 से ज्यादा लोग इसको देख लें, आज सारी न्यूड फिल्में बनवाने वाले कोड़े खा के मर चुके होते हैं। आज आप और मैं, हम जैसे लोग जिसको इंटरनेट के बहुत सारे फवायद दिखते हैं, क्यों अपने बच्चों को खुलेआम नेट पे नहीं बैठने देते? ये गंदी तस्वीरें आती हैं, ये तस्वीरें कहीं तो बनती हैं ना, पिक्चराइज भी होती हैं, कैमरामैन भी होते होंगे, अल्लाह जाने कितने लोग उनको देखते हैं। सब उनको देखने वाले जो गलत काम करें ये सब गवाही दे देते हैं, इन सब को कोड़े लगा के मार मार के खत्म कर दो, दुनिया से करप्शन साफ हो जाएगी अगर हम इस इस्लाम के हुक्म को आम कर दें। और ये आम फेल तो तभी होता है ना जब लोग महफिलों में करेंगे या पार्टीज में करेंगे या नाइट क्लब्स में करेंगे। आपने नहीं देख, आपने देखा खामोश रहना पड़ेगा, नहीं बोल सकते आप किसी के सामने। ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट हद है कि 4 लोगों ने इसकी गवाही दे दी है, फिर ये बात होगी। और जब एक दफा हुकूमत के पास बात पहुंच गई, जैसे नबी सल्लम के पास बात पहुंच गई या मुसलमानों के अमीर के पास, अब लगानी पड़ेगी हाथ, अब ला ताखुस्कुम बिहिमा राफतुम फी दीनिल्लाह,
आप माफ भी नहीं कर सकते, माफ करना था तो पहले करना था। पूरा मौजू पढ़ ले, इसमें काफी चीजें हैं जिस पे बात हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको हल्का सा पहले वाइंड अप कर ले। अल्लाह ताला कहते हैं ये कब होगा, इन कुंतुम तूमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये हदें वहीं लगेंगी जहां अल्लाह पर ईमान और यौम आखिर पर ईमान होगा। अच्छा, बार बार अब लफ्ज हद मेरे मुंह से सुन रहे हैं तो इसको भी नोट कीजिए। सूरह मायदा में आपको बताया था लेकिन हो सकता है भूल गए हो तो दोहरा लेते हैं। देखिए, वो सजाएं जिस पे अल्लाह ने सजा मुकरर कर दी है उसको हद कहते हैं। दिल का हुदूद अल्लाही, अल्लाह की हुदूद है। जैसे जिना की हद अल्लाह ने लगा दी, किस क्या हद है लिख लीजिए। गैर शादीशुदा लड़का लड़की है 100 कोड़े और 1 साल की जिला वतनी, एक्सपेल कर दिया जाएगा उस माहौल से ताकि वो माहौल बदले उसका और अच्छी जगह जाके ठीक हो के आए। शादीशुदा लोग जिना करें उसकी सजा की तरह आज कुरान में नहीं है, लेकिन सही दर्जे की रिवायात में ना सिर्फ हुक्म मौजूद है बल्कि अल्लाह के नबी ने ये करके दिखाया। एक मौके पे किसी शख्स की बीवी और किसी के बेटे ने जिना किया। अब बेटा जो था वो जाहिर अनमेरिड था उसका, तो बीवी तो मैरिड थी, तो अल्लाह के नबी ने उस औरत को रजम करवाया और उस लड़के को 100 कोड़े लगवा कर रद्द पीछे किया। तो लिहाजा वो आयत पहले से मौजूद थी, आज भी आपको ये आयत मिल सकती है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के बारे में ये बयान मिलता है कि अगर ये डर ना होता कि लोग ये कहेंगे कि उमर ने कुरान में इजाफा कर दिया, तो वो आयत वो कहते सूरत अल अहज़ाब में थी वो पहले आयत, लेकिन नासिख और मनसूख की वो हुक्म कि जिसमें आयत उठा ली गई हुक्म मौजूद है ये उसमें आती है। तो वो आयत भी वो कहते हैं हजरत उमर की रिवायत से भी मिलता है और भी सहाबा से मिलता है कि हम वो कुरान पाक में ये आयत पढ़ते थे कि व शेख व शेखतु, शेख और शेखा अरबी जुबान में शादीशुदा मर्द और औरत के लिए भी आता है लफ्ज, हालांकि किसी उस्ताद और लीडर के लिए भी आता है। मैं आपको चंद रिवायतें पढ़ के सुनाऊं क्योंकि आज के दौर का ये फितना है। इनकार हदीस का जो मुनकर फिरका है वो रजम को आज नहीं मानता। क्या नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? हजरत उमर की का खुतबा है, हजरत इब्ने अब्बास इसके रावी हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हजरत उमर ने फरमाया कि जबकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर तशरीफ रखते थे कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा और आप पर किताब नाजिल फरमाई, तो जो कुछ किताबुल्लाह में आप पर नाजिल हुआ इसमें आयते रजम भी है जिसको हमने पढ़ा और याद किया और समझा, फिर रसूलुल्लाह ने भी रजम किया और हमने आपके बाद भी रजम किया। अब मुझे ये खतरा है कि जमाना गुजरने पर कोई यूं ना कहने लगे कि हम रजम का हुक्म किताबुल्लाह में नहीं पाते, वो तो एक दीनी फरीजा छोड़ देने से गुमराह हो जाएंगे जो अल्लाह ने नाजिल किया है। और समझ लो कि रजम का हुक्म किताबुल्लाह में हक है इस शख्स पर जो मर्दों और औरतों में से शादीशुदा हो, जबकि इससे जिना पर शरई शहादत कायम हो जाए या हमल ठहर जाए या इतराफ पाया जाए। इसी तरह सही बुखारी में इससे भी ज्यादा तफसील से ये रिवायत मौजूद है, आप खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जिल्द नंबर 2 में 1009 नंबर की रिवायत है जिसमें इससे मजीद डिटेल्स मौजूद है। तो ये आयत मौजूद थी। हजरत उमर कहते हैं कि ये डर ना होता कि लोग कहेंगे कि उमर ने किताबुल्लाह में अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दिया है, तो मैं इस आयत को कुरान के किसी गोशे में लिखवा देता। और इसी तरह अब्दुलरहमान बिन औफ भी इसके गवाह हैं और सहाबा भी कहते हैं कि ये आयत पहले से मौजूद थी। तो हमारा अमल क्या होना चाहिए? आमन्ना व सद्दकना समय ना वाताना। तो लिहाजा ये रजम की आयत मौजूद है और रजम करने की भी शरायत है। एक मारूफ वाक्य जो आपने कई दफा तफसीर में सुना होगा कि गामदी औरत की एक औरत ने इतराफ किया। अच्छा, ये सजा लगी होगी कैसे? नंबर एक तो बता दिया कि 4 लोग गवाह दे होंगे, दूसरी बात ये कि खुद इतराफ कर ले आके जानी या जानिया, जब वो इतराफ करे और उसका इतराफ कितना शदीद होगा कि अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई और उसने आके कहा अल्लाह के नबी मेरे से जिना हो गया, मुझे हद लगा दे, सजा दे दे, मुझे पनिशमेंट दे दे। आपने उसकी बात को सुना अनसुना किया, बार बार का आखिर कहने लगी कि अब तो बच्चा भी पेट में है। कहा फिर तेरे बच्चे का क्या कसूर है, बच्चा पैदा होगा तो फिर आना। फिर बच्चा पैदा हुआ, छोटे से बच्चे को लेके वो औरत आ गई, कहा इसको दूध पिला, इसको कौन पिलाएगा, जब खाने के काबिल होगा लाना। और चंद माह के बच्चे को वो औरत जो थी रोटी का टुकड़ा पकड़ा के लेकर आती है और कहती है अल्लाह के नबी गुना सोने नहीं देता, इससे पहले कि मेरी मौत आ जाए मुझे हद लगवा दे। ये है ना इन कुंतुम तूमिनूना बिल्लाही वल यौमिल आखिर, ये सच्चा ईमान है। जिनको आखिरत की पकड़ का डर होता है उनको यहाँ की फिक्र नहीं होती, क्योंकि जिस पे हद लग जाएगी फिर इंशाल्लाह उसको आखिरत में उसमें मुआवजा नहीं होगा। ये तो दुनिया की सजा कबूल की, आखिरत की सजा कितनी शदीद है। अल्लाह के नबी ने मेराज के मौके पे देखा कि कुछ लोग हैं जो गंदा और बदबूदार गोश्त खा रहे हैं, साफ गोश्त उनसे छुड़ाया जा रहा है। तो पूछा, ये कौन है? कहा, ये जानी और जानी है। घर की पाकीजा बीवियां और मर्दों को छोड़कर गंदी जगहों पे जाते थे, अल्लाह आज इनसे वही काम करा रहा है। इस तरह बहुत ज्यादा सजाएं हदीस में हमें मिलती हैं। बदबू है, एक जहन्नुम की एक ऐसी वादी है जहां से ताफुन और बदबू उठती है, जहां से शर्मगाह की बदबू आती है, और ऐसी औरतें और मर्द हैं जो ऐसे गंदे कामों में थे। आज हम इसको आर्ट का नाम दे दें, फन का दे दें, कल्चर कह दें, मॉडर्निज्म कह दें, वट एवर सोइज्म कह दीजिए, इस्लाम इन नामों के साथ नहीं आता, तो खुद एतराफ करने वाले के ऊपर भी हद लग जाती है। लिहाजा इसी तरह अब ये बात, तीन लोग चार नहीं मिलते, या दूसरी बात है कि जिना नहीं लेकिन वो नहीं साबित हो, लेकिन कुछ इस तरह के सरकमस्टांसेस दिखते हैं, कुछ ऐसी हालात हैं, कुछ ऐसे गैर जिसको कहते हैं मुहज़्ज़ब तरीके से किसी को देखें, तो फिर इमामे वक्त जो है वो अपनी मर्जी से कुछ सजा दे सकता है। जो सजा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है उसको हद कहते हैं, हुदूद। पांच है अमूमन, जिना की बता रही थी आपको, सजा हो गई। इसी तरह मुर्तद को कत्ल किया जाता है, कोई किसी को कत्ल करता है तो उसके बदले में उसको कत्ल किया जाता है। किसी पे झूठा इल्जाम लगा देना, कजफ बोलते हैं अगली आयत में आ रहा है, तो उस पे 80 कोड़े हैं। शराब की हद है, 40 भी कहते हैं 80 भी कहते हैं। इसी तरह की ये सजाएं। इसके अलावा अगर जुर्म थोड़ा दर्जे का हो, जिना नहीं हुआ लेकिन उसकी नाजेबा हरकत है, कोई ऐसी बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो फिर हुक्मरान अपनी मर्जी से सजा देगा, और उसमें हद 10 कोड़े होते हैं, 10 से ज्यादा नहीं है, और वो वक्त और हालात के मुताबिक देखेगा कि ये कैसा है। इसी तरह एक और मुफसरीन में बहस है कि अगर कोई जानवर के साथ ऐसा काम करे, या मर्द मर्द के साथ, जिसको होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, तो इसके बारे में भी यही जवाब है कि इनकी हदूद तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इतनी शिद्दत सहाबा में पाई जाती थी कि वो ऐसे शख्स को जिंदा जलाने की भी बात करते थे। तो ये सब कुछ वक्त के मुताबिक हुक्मरान जो मुसलमानों का होगा वो इसके ऊपर बात करेगा। अब इसके बाद आप देखिए इस आयत को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये मजमून चलता रहेगा आगे भी, और इसमें हमें कुछ और चीजें भी मिल जाएंगी। लेकिन ये जो बात है, वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, इसका क्या मकसद है? तन्हाई में क्यों सजा नहीं हुई? इसलिए पब्लिक साइज किया इसको, ताकि देखो और फिर इबरत पकड़ो। अच्छा, अब यहाँ एक छोटी सी बात, मैं 2 दिन से मुसलसल सोच रही हूँ जब से ये आयत मेरे सामने है। आज अल्लाह करे इस्लाम नाफिज हो जाए हमारे मुल्कों में, तो क्या मीडिया पे जाके ये सजाएं दिखाएंगे? कोड़े मार रहे हैं देखो, लोगों को दिखाएंगे? कभी भी नहीं करेंगे। दिखाना है लोगों को मीडिया से और वीडियो से, तो ये कुरान दिखाइए, और या तुम भेजी ना दिखाइए। जिन मुसलमानों ने अपना इस्लाम नहीं दिखाया वेस्ट को भी, उसकी खूबसूरती नहीं दिखाई, ये सजा दिखाएं टीवी पे जाके, तो वो तो बातें करेंगे ना, देखो ये वहशी और ये फला और फला, और ऐसे ही टोटे जमा करके लोगों ने इस्लाम पे बातें की। इंतहाई ना समझी की बात ऐसी चीजों को आम करना। 10 ताइफा 3 से लेके, बस समझे कि 1,000 के अंदर है, लेकिन मुराद है कि एक छोटे से ग्रुप में, वहां जाके किसी चौक में, किसी सड़क के किनारे, ताकि लोगों को पता चले, बल्कि चंद दिन कहते हैं कि उसकी लाश को वहां लटकाया रखा जाए, ताकि पता चले कि लोगों को इबरत हो। अल्लाह ताला बचा के रखे। और आप देखें कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी जब ये सारे हालात अच्छे तरीके से होंगे, और फिर अजाब हुमा का लफ्ज जहां है, इसको भी नोट कीजिए, सजा के लिए और भी लफ्ज आते हैं, लेकिन अजाब कहकर बता दिया गया कि दुनिया का ये अजाब है, और जो दुनिया में आ जाएगा वो इस अजाब से बच जाएगा। कहीं 3 लोग ना मिले तो 1-2 लोगों के सामने भी इसको किया जा सकता है। सजा चुके मोमिनों पर है, इसलिए मोमिन देखें, वही इबरत पकड़े, ना कि आप इसको नॉन मुस्लिम्स तक आम कर दीजिएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि ये जो बात आती है इसमें कि हद लगेगी और ताजीर होगी, तो इसमें एक छोटी सी बात और नोट कर लीजिए कि अब एक हालात ऐसे होते हैं कि दोनों की मर्जी नहीं होती, एक की मर्जी है, तो उसको फिर जबर कहेंगे, बिल जबर, जिना बिल जबर, फिर हुक्मरान, फिर मुकदमा चलेगा। ऑफ कोर्स हुकूमत देखेगी कि औरत की मर्जी थी या उसके ऊपर जबरदस्ती की गई। इसी तरह बाज दफा घर में डाकू घुस आते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, तो उसमें इस तरह दोनों को नहीं पकड़ाया जाएगा, दोनों पे हद उस वक्त लगेगी जब दोनों की मर्जी होगी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी कबीर चीजों के देखने और सुनने से भी बचा के रखे। कबीरा गुनाह है जिना, शिर्क और कत्ल के बाद इसका दर्जा है सूरह फुरकान आयत 68 में आता है, तरतीब है बिल्कुल, वहां आप नोट कर लीजिएगा जाके कि वल्लजीना यदून मअल्लाह इलाहन आखर वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हरम अल्लाह इल्ला बिल हक वला यज़नून। तो तरतीब के तेवार से ये तीसरे दर्जे का गुना है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में कि जानी जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता, ईमान रुखसत हो जाता है, यानी अगर उस हाल में मौत आ गई तो फिर ईमान के बगैर की मौत होगी। फरिश्ते भी हया करते हैं ना इस चीज से। फिर इसी तरह से लिवातत, उसके बारे में हदीस आती है, फक्तलू अल्फाइल वल मफूल, औरत और मर्द दोनों को कत्ल कर दो। बास ने कहा कि इनको भी रजम किया जाएगा। इसी तरह को अपनी बीवी से गैर फितरी ताल्लुक रखे, वहां पीछे मैंने जिक्र नहीं किया था, भूल गई थी, सूरत आला सूरत मोमिनून में भी आता है ना वो जो है कि फमन इब्तगा वरा जालिक, यानी जो जायज से नाजायज हदों में जाए, तो अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ कौमे लूत वाला फेल करे तो उस पर भी पकड़ होगी, हद तो नहीं है लेकिन पकड़ होगी, और इससे इंसान को बचने की जरूरत है। कभी शुबा पड़ जाता है तो फिर हद नहीं लगेगी। हदीस में आता है, इधर अल हदूद बिशुबहात, हदों को रोक लो शुबे की वजह से, यानी कंफर्म बात होगी फिर ऐसा होगा। तो अल्लाह ताला असल में हमें चाहता है कि जालिम का साथ देने की बजाय मजलूम का साथ दे। जितने लोग इसके ऊपर बात करते हैं वो असल में खुद को अपने ऊपर लेके नहीं सोचते। अल्लाह ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा मामला, तो वो क्या चाहेंगे, छोड़ दो ऐसे जालिमों को ताकि औरों की इज्जतें खराब करें। तो जालिम का साथ देने की बजाय मजलूम का साथ देंगे, और जब किसी सोसाइटी में ऐसी बातें होने लग जाती हैं तो फिर इससे अल्हम्दुलिल्लाह वो तथहीर भी होने लगती है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता मुजरिम को मारो पीटो, बल्कि उनका तस्किया करो, उनको जायज और नाजायज का फर्क बताओ और निगाहों को झुकाओ। अब आगे पूरी सूरत में हम सद्दे ज़राए पढ़ेंगे, क्या क्या तरीके हैं जिसके जरिए से जिना को पीछे किया जा सकता है। अगर आप देखें कि एक चीज से आप एक चीज पे आप काबू पा ले तो दूसरी चीज खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब सारी औरतें कवर्ड होंगी, अपनी इस्मत की हिफाजत करेंगी, तो क्या होगा? आज सऊदी अरब के कवायफ देख लीजिए, आप जो मर्जी के उनको, वो जी घरों में कैसे कपड़े पहनते हैं, काले बायों के अंदर क्या है, आपको क्या लगे, हमारे भी तो कपड़ों के अंदर जिस्म ही है ना। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगंडा है कि जी तुम्हें क्या पता वहां क्या हो रहा है। तो फिर इसकी यही मिसाल है, लोग कहते हैं ये मुनाफिक, चलो अभी बेस्ट वाले जिना करते हैं, खुल के करते हैं, हमारे मुल्कों में तो छुपके। इसकी ये मिसाल है कि आप किसी शहर में जाएं और वहां गटरों पर ढक्कन दिए हो, तो आपके देखो कितने मुनाफिक हैं, गटर का पानी ढक के रखते हैं, आप जरा खोल दें, मक्खियां बिन बिन करें, मच्छर आए, आपके चलो शुक्र है मुनाफिक तो नहीं है जो ढक्कन रखते हैं। जिन मुल्कों में, इवन आज हमारे मुल्कों में भी अगर ये बुराई है, ढक चुप के हो रही है, तो उससे तो बेहतर है जो खुली हुई है। आपको सड़कों पर आ जाते तो गंदगी नहीं नजर आती। तो लिहाजा आज भी फिगर्स एंड फैक्ट्स मौजूद है, आप जाके लिख के देखिए। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जिसके मिसाल इसलिए देते हैं कि किसी हद तक शरीयत आज यही नाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह। और शाह फैसल का आपको वाकया कई बार सुनाया कि इलाज के सिलसिले में लंदन जब आए थे तो यहाँ के बड़ों में से कोई इनके पास आया तो उसने ताना दिया था कि तुम लोग बहुत यानी जुल्म करते हो और औरतों पे और मर्दों पे। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी के जरिए वो फाइल खोल के रख दी कि ये बताओ कि तुम्हारे इस मुल्क में एक साल में कितने जुर्म हुए हैं, कितना कुछ हुआ है, और मेरे मुल्क के देख लो। तो नतायज ही तो असल चीज होती है ना। तो बहरहाल अमन चैन तो मौजूद है, और इस्लाम चाहता है कि जो बच्चा दुनिया में है उसको पूरी मोहब्बत भी मिले, इज्जत भी मिले, ऑनर मिले। एक और रिपोर्ट मैं सुन रही थी कि जिसमें एक जेल थी नॉन मुस्लिम मुल्क किसी की, तो उन्होंने बताया हुआ था कि जितने कैदी जितने मुजरिम हमारे पास आते हैं इनमें मोस्ट ऑफ जो है वो नाजायज बच्चे हैं। और इन्हीं के एक सियासी लीडर का बयान था कि अगर हमने ये तरीका ना छोड़ा तो आज से कुछ साल के बाद अमेरिका की आबादी जो है पूरी की पूरी नॉन इलीजिबल जो बच्चे हैं, जो नाजायज बच्चों पे मुश्तमिल होगी। तो अल्लाह ताला हमारे इस्लाम की कदर की तौफीक अता फरमाए। यहाँ बात करके अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन अव मुशरिका, अब यहाँ इनका मिजाज बताया गया, चॉइस बताई गई कि जानी मर्द पसंद ही नहीं करता निकाह करने को सिवाय जानिया के, टेस्ट ही गंदा है, और या फिर उसको पसंद आती है तो मुशरिका आती है, कोई गोरी आती है या कोई दूसरी आती है, उसको अच्छे ही नहीं लगते ऐसे लोग के जो इस्लाम की बात करते हैं और इस्लाम के ऊपर यानी उनकी नजरें नहीं होती। इस आयत को दो मुख्तलिफ अंदाज से समझा गया है, एक है हुक्म और एक है खबर, दोनों का फर्क समझ लीजिए। अगर इसको हुक्म समझें
तो इससे बिल्कुल वही बात मुराद है जो सूरह बकरा में हमने दूसरे पारे के आखिर में निकाह के टॉपिक के शुरू में सुनी थी कि ला तन केवल मुश्किलात ही हत्या यो मिलना। पहला हुक्म ये कि जानी मर्द है तो उसका निकाह बिल्कुल ना करो किसी पाक दामन औरत से, लड़की से। हाँ वो खुद भी गंदा है तो किसी गंदी लड़की से कहते हैं मेरी शादी कर दो तो दोनों एक जैसे हैं। नॉन मुस्लिम्स की भी तो शादी हो ही जाती है ना। माँ बाप को हुक्म दिया गया कि अपनी बेटियों के लिए जब रिश्ते ढूंढो तो देख लो कि लड़का जानी तो नहीं है। बड़े बड़े नाम, स्लोगन, डिग्रियां, उनकी पे चेक, उनकी गाड़ियां, उनके टेलीफोन सेल नंबर से मत मुतासिर हो जाओ कि अपनी पाक दामन बच्ची किसी गंदे लड़के को दे दो। और ये देखा गया वो बच्चियां जिनको बाहर झांकने की इजाजत नहीं होती शादी से पहले, बाज दफा दौलत के शहर में, बाज दफा बाहर का रिश्ता है, यही बड़ी खूबी है कि लड़का बाहर रहता है, और बाज दफा कुछ चमक दमक जेवरात की और चमक की, माँ बाप ये सोच के देते हैं चलो कोई नहीं बच्ची खुश खाएगी तो सही ना, क्या खाएगी, रोगे सोएगी रोज, जो अल्लाह का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। तो लिहाजा हुक्म है ये। और दूसरा इसमें च्वाइस है, खबर दी गई कि उनकी चॉइस ही गंदी होती है, ऐसी ऐसा लड़का जिसकी नजरें अब दूसरी लड़कियों में डल गई, उसको माँ बाप की लाई भी सीधी साधी बच्ची पसंद भी कोई नहीं आती। वो कहता है मुझे नहीं ये फोहड़ चाहिए, कर भी दे रिश्ता तो निभाते ही नहीं है लड़के। वो कहते हैं हमें तो फलां जैसी चाहिए, और किसी भी अदाकारा या गुलकारा का नाम ले लेते हैं। तो दोनों बातें ठीक है, और यहाँ आप देखिए कि जानिया और मुशरिका को साथ किया गया, और साथ ही अगला भी बता दिया, बस जानिया तो ला यनकेहुगा इल्ला जाने, और जानिया औरत भी इस लायक ही नहीं कि इससे कोई निकाह करे, हाँ मगर जान जानी ओ मुशरिकुन और मुशरिक, वह हुर्रिमत ज़ालिका लिल मोमिनीन, और हराम कर दिया गया क्या जानी और जानिया से निकाह मोमिनों पर। अब इसमें फिर कुछ बातें हैं, समझ लीजिए उसको भी, बातें तो अच्छी नहीं है लेकिन फी जमाना कई लोगों के मसाइल होते हैं। शादी से पहले ताल्लुकात बनते हैं, लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्या करें अब उस मामले को। देखिए कि फिर वही बात है कि अगर हमने शुरू से तरबियत में वो सारी चीजें रखी होती जो इस्लाम का मिजाज है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसले ही ना उठते। अब शुरू से तो आपने खराबी इतनी नोट नहीं की, माहौल तो बच्चे बच्चियों को पूरा वो दिया, को एजुकेशन दी, खबर ही नहीं, रातों को भी बच्चियां जा रही हैं, और यकीन करें जो बातें कानों में पड़ती है ना वो यहाँ बैठ के बयान करने को दिल ही नहीं करता। जो आज गंदगी तालीम के नाम पे यूथ में आ चुकी है, अपने मुल्कों में कई जगह नहीं बची हुई, यहाँ की तो बात ही छोड़ दो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्लीप ओवर्स, ये नए जहर है हमारी नस्ल के लिए। उसके घर रहना है, उसके घर स्लीप ओवर है, दोस्त के घर रहना है, बहन के घर रहना है, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब चीज अपनी जगह सड़ती है खराबी होती है। लेकिन अब फी जमाना इस मसले को कैसे हल करें, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, अब वो कहते हैं हमारी शादी कर दो, क्या करो, लड़की को भी बुलाओ देखो कैसी है, अपने लड़के को भी देखो, अगर अभी तक नहीं दीन नमाज उसमें आया ना तो शादी को बेस बनाओ, चलो नमाज शुरू करो, चलो अपने आप को ठीक करो। बच्ची भी आप देखते हैं कि जिस पे मेरे लड़के की नजर है वो लड़की भी ऐसी नहीं है, तो उस बच्ची को भी बुलाएं, फिर तरबियत करें, चलो बेटा आओ मेरे साथ, चलो क्लास में चलो, कुरान सुनो, दोनों की सलाह करके करते हैं। इसलिए कि आप उनकी सलाह करने का एक तो मौका मिलेगा, चलें शादी के लिए ही दीन पे आएंगे, नमाज शुरू करेंगे, अल्लाह का रास्ता खोल देगा, करवा दें, अच्छी बात है। क्योंकि जब शुरू से आपने नहीं मना किया तो फिर इसको बना का मसला ना बनाए। अब दूसरी सूरत है कि खराबी इतनी बढ़ चुकी है कि वो करप्ट, ऐसा करप्ट है कि आपकी बच्ची को खुश ही नहीं रखेगा, तो फिर दो में से एक चीज है, या तो फिर अल्लाह के हुक्म पे अपनी ख्वाहिश पे तलवार फेरे, प्रेगनेंसी, यकीन करें मैं अल्लाह के डर के साथ ये बात कह रही हूं कि अब अक्सर केसेस यही हमारे तक पहुंचते हैं, शादी करने की वजह ये है कि अब प्रेगनेंसी हो गई है, अब क्या करें, कर दें उधर ही और दोनों से तौबा कराएं। ऐसे ऐसे केस हैं कि अल्लाह की पनाह के मैं सोचती हूँ कैसी औलादों से तो फिर औलादें ना ही हो, माँ बाप का सर झुकाने वाली औलादें, पानी सर से गुजर जाता है ना तो फिर हम उसके प्रिकॉशंस लेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। बस दफा शादी लड़के लड़के खुद जाके कर लेते हैं, माँ बाप नहीं राजी होते, लड़का बाप बाप कहते मैं इधर शादी नहीं करूंगा बेटी की, अब वो खुद जाके कोर्ट मैरिज कर लेती है, या जितने बच्चे होंगे सब नाजायज है। अब क्या हो, साल 2 साल बाद बाप राजी हो गए, बाप से के फिर निकाह पढ़वाए। ऐसा ऐसे कई केस हमारे हाथ के अंदर हुए कि बाप की मर्जी के बगैर लड़की ने शादी की लड़के से, फिर बच्चा हुआ, अब माँ बाप मिल देंगे, अब जाओ दोबारा उनका निकाह पढ़वाओ। जब तक साथ रहेंगे वो नाजायज रहेंगे, बच्चे जो वो नाजायज है। एक इस्लाम को छोड़कर कितनी सजाएं पाई हमने। और अभी ये तो आप, मैं इस क्लासरूम में बैठ के बातें कर रहे हैं ना, कभी आप जरा थोड़ा सा बाहर निकल के एक लिबरल तबके में तो जाके देखिए और मॉड तबके में देखिए, वो कहते शराब पीनी पड़ती है, बीवी अपनी दूसरे अपने बॉस को देनी पड़ती है, क्या करें। खुद सजा संवार के बीवियों को ले जाते हैं कि जरा जाओ काम निकलवा के लाओ। वल्लाही ये हम मुसलमानों की बात है, नॉन मुस्लिम की तो हम बात ही नहीं करते। आज इतना ऊपर चेहरे बड़े खूबसूरत है लेकिन अंदर इतनी गंदगी है कि एक दफा अगर चेहरा खुल गया तो हम किसी को शक्लें नहीं दिखा सकते। और हदीस में आता है कि जिना करता हुआ अगर कोई दुनिया से गया, क्यामत के दिन इसी हालत में उठेगा। बच्चे पे कितना जुल्म है, फिर वो बच्चे को मरवाया जाता है, फिर वो बच्चे सारी जिंदगी आप देखिए कि किस कॉम्प्लेक्स का शिकार है ना, जिनकी माँ दादा दादी नहीं, वो मोहब्बत ही नहीं उन बच्चों को मिलती। तो पहले से प्रिकॉशन ले, आज रियलिटी पे आना पड़ेगा, अपने बच्चों को लेके आना पड़ेगा। इस्लाम हमारे लिए वो एक हथियार है, यानी आप कह सकते हैं कि इस्लाम आज हमारे लिए वो वेपन है कि जिसके साथ हम शैतान और नफ्स के तकाजों को दबा सकते हैं। जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें, कैद कर लें, लोग नहीं बच, जेलें हैं भरी हुई हैं, कहते हैं करते हैं, करते थे, करेंगे, मजा आता है। आज ही डिटाई है गुनाह के अंदर। सिर्फ तस्किया, अपनी औलादों को अपनी जिंदगी में इस किताब के साथ जोड़ना है, फिर बात बनेगी। कोई सवाल इस बारे में आपके जहन में तो करिए, नहीं तो आगे, क्योंकि आगे अब है तो मजू यही, लेकिन थोड़ा सा उसकी नौीय चेंज हो रही है। जी कोई क्वेश्चन जिससे दूसरों का फायदा अगर हो सके, या कोई बात काम के मुतालिक। जी कोई सवाल नहीं है, ठीक है फिर ब्रेक ले लीजिए यहाँ पे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद 20 मिनट में नमाज भी पढ़ते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं, और इस आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा उसके बाद। आपको पता है कि मुहर्रम का महीना शुरू हो गया। इरम आपने भेजी थी ईमेल सबको, आप में से किस किसने मुहर्रम का लेक्चर सुना? सिर्फ आपने, आप क्या जानते हैं मुहर्रम के बारे में जिन्होंने लेक्चर में नहीं सुना? जी इरम आप क्या जानती है मुहर्रम के बारे में? असवाब अपने अमल की बातों में बताइए। जी जी ये बातें सब ठीक है, करते क्या इस महीने में? यानी 10 दिन का जो दिन है आशूरा का, आपने मेरा सवाल समझा था? आपके मेरे अमल की क्या बात है ये पूछ रहे। देखिए मुहर्रम का महीना जो ना, ये हुर्मत का महीना है, ठीक है ना? आप सबको भी ये बात मालूम होगी, होनी भी चाहिए। अगर लेक्चर आपको कहा गया था सुने तो नहीं सुना, तो ये हमने एक नाफरमानी की है। इस महीने की पहली छोटी सी बात होती है, उस पे दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी। दूसरी बात यह है कि इसमें 9, 10 और 10, 11 या खाली 10 का भी अगर मजबूरी हो तो रोजा रख सकते हैं। ये बाकी जो दिन है आपका दिल चाहता है तो आम दिनों से ज्यादा नेकियां कर सकते हैं, कोई भी नेकी आप कर सकते हैं। खास रूप हुरमत का महीना है, तो इसमें आज से आप नियत करें कि मैंने कम अज कम इस महीने में गीबत, चुगली, बोहतान, इल्जाम, लड़ाई, शिकवा और शिकायत नहीं करनी, ठीक है? चलिए ब्रेक ले लीजिए और इंशाल्लाह अभी पहले इरम ब्रेक है कि नमाज है? चलिए ठीक है फिर आइए नमाज पढ़ते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ بہت سارا کچھ ہم سب نے بھی سیکھا، اور غیبت، غلط کام، جھوٹ نہیں بولنا، میک ریزولوشنز، یہ سب ہم نے اپنے محرم کے اس نئے اسٹارٹ سے سیکھا ہے. ٹو میک نیو ہجرت فرام اگنوسٹک گائیڈنس، بالکل صحیح. اور لڑائی بھی نہیں کرنی، بیکار کام نہیں کرنے، اور ایسی چیزیں نہیں کرنی جس سے کسی کو نقصان پہنچے، اپنی ذات کو بھی یا دوسروں کو بھی نا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آیا سسٹر ہمارا کہ یہ ورڈ کیا آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں بالکل. سب نماز پڑھے اور بریک ہماری اسٹارٹ ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی بریک لیں گے، تو آپ لوگ بھی سب اپنا جو بھی ریلیکس کرنا ہے نماز پڑھنی، تو آپ انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.